जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरि वर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोद यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोद राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी रथ माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोद यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोद जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य मद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दरवाजा बंद कर दें तो अच्छा रहेगा पहले से ही। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ध्रुव महाराज को सुनीति के द्वारा उपदेश मिला। हमारे जीवन में भी हमें चुनाव करना चाहिए कि हमें सुनीति चाहिए या सुरुचि चाहिए। सुनीति अर्थात जो अच्छा मार्ग दिखलाए, जैसे सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को दिखलाया, और सुरुचि अर्थात जो दिखने में बड़ी आकर्षक हो लेकिन जो केवल कष्ट प्रदान करे। जैसे सुरुचि बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, उत्तानपाद बहुत आकर्षित थे, उनसे आसक्त थे, लेकिन उन्होंने केवल कष्ट दिया ध्रुव महाराज को। दूसरी ओर सुनीति जो उत्तानपाद के लिए बहुत आकर्षक नहीं थी लेकिन मार्ग सही दिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें बहुत आकर्षक होती हैं, हमें लगता है कि ये कर लेने से बहुत जल्दी जीवन में सफलता मिल जाएगी या यही करने से हम जीवन में सुखी होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें आकर्षक होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी पैसा कमाना, ये बहुत आकर्षक है, ये सुरुचि है। अगर हमें पता चलता है कि एक मार्ग है, बस इतना पैसा लगाओ, इतने दिनों में इतना पैसा मिल जाएगा, तो हम सब उसकी ओर भागते हैं। ये सुरुचि है, क्यों? बहुत आकर्षक है। ऐसा कई बार हुआ है, कुछ लोग स्कीम्स निकालते हैं, आप हमें आज 3,000 रुपया दीजिए, 21 दिन के अंदर आपको 6,000 रुपया देंगे। आदमी वाह, ये सुरुचि है, क्यों? बहुत आकर्षक है। 15 दिन में 21 दिन में 6,000 रुपया, 1 3 का 6, आदमी दे देता है, फिर और लगाता है, फिर और लगाता है, फिर और लगाता है, कभी 3,000, कभी 10,000, कभी 50,000, फिर 1,00,000, और एक दिन वो कंपनी गायब। तो सुरुचि केवल दुख दे सकती है, फिर वो जीवन भर रोता रहता है, हाय हाय इतना पैसा चला गया मेरा, कंपनी लेकर भाग गई। तो ये सुरुचि है, दिखने में आकर्षक, लगने में आकर्षक, आसक्ति है लेकिन कष्ट देती है। तो इसी तरह ऐसे कोई चीज़ें जो बहुत आकर्षक लगें, बहुत जल्दी कुछ आनंद देने वाली हों, निश्चित कष्ट प्रदान करेंगी। इसीलिए भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बार लोग आकर भक्ति के लिए, कुछ ऐसे गुरु आते हैं जो कहते हैं बहुत जल्दी 6 महीने में हम आपको भगवान दिखा देंगे। आदमी को लगता है इस्कॉन वाले तो बोलते हैं कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं भगवान देखने में, और ये आदमी हमें 6 महीने में दिखा रहा है, तो फिर ये ठीक है? ये सुरुचि है। तो चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे भौतिक मार्ग हो, चाहे धन कमाना हो, मान प्रतिष्ठा हो, या धर्म ही क्यों ना करना हो, जहां भी जो चीज बहुत आकर्षक है, तुरंत हमें आकर्षित कर लेती है, हमारा मन उधर चला जाता है, सावधान रहना चाहिए, हो सकता है वो सुरुचि हो। क्योंकि सुनीति की ओर आकर्षित नहीं होते हैं हम लोग, उत्तानपाद सुनीति की ओर आकर्षित, वो भी उनकी ही पत्नी थी लेकिन उनकी ओर आकर्षित नहीं। इसी तरह हमारे कई कर्तव्य हैं जिनकी ओर हम आकर्षित नहीं हैं, हमें अच्छे नहीं लगते वो। जैसे जब कहा जाए भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, शुरुआत में इतनी आसक्ति नहीं होती है। शुरुआत में क्या 20-20 साल बाद भी हमें आसक्ति नहीं होती है ना? भगवान का नाम लेते रहते हैं 20 साल तक, और फिर कुछ हो जाता है जीवन में तो फिर तुरंत छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें बहुत आकर्षक लगें, जिनसे बहुत जल्दी लाभ होता हो, उनसे सावधान रहें। कोई ऐसे आपको धर्म के मार्ग में भी आकर बतलाएं कि बस इतना कीजिए, ऐसे कीजिए, 6 महीने में, 1 साल में तो आप खुद भगवान बन जाएंगे, हमें कान आँख सब बंद कर लेना है ऐसे व्यक्ति के लिए, ये सुरुचि है। तो सुनीति ने क्या कहा? जाओ भगवान की तपस्या करो, उनकी और केवल भगवान की, वही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। सुनीति कहने लगी कि तुम्हारे जो वंशज हैं ब्रह्मा जी, उनको सारा ज्ञान भगवान ने ही प्रदान किया है। इतना ही नहीं, मनु हैं, शिव हैं, इन सब की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। तो सुनीति सही मार्ग दिखलाने लगी कि ये जिन चीजों के पीछे तुम पागल हो, तुम सोच रहे हो ब्रह्मा जी का राज्य बड़ा है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, इन सब की शक्ति भगवान से आती है। समय लगता है लेकिन भक्ति उन्हीं की करो। तो देखिए, हो सकता है हम जब भगवान की भक्ति करें, जैसे दरवाजा बंद कीजिए, हम जब भगवान की भक्ति करें तो हो सकता है कि हमें बहुत समय लगे, तुरंत लाभ नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है कि बस आज हमने भक्ति शुरू की, आज हमने भगवान का नाम लिया, कल हमारे चार हाथ हो गए, हम भगवान के धाम चले गए। आपने देखा है ऐसे कहीं? आप में से कई लोग कई साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कई साल से भक्ति करके भी लगता है अभी तक हृदय में जो गंदगी थी वो अभी वैसे के वैसे ही है, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, कुछ बदलाव नहीं हुआ। ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है। तो हो सकता है ये मार्ग धीरे धीरे फल प्रदान करने वाला हो, लेकिन ये सुनीति का पथ है। सुनीति अर्थात जो अच्छी नीति, अच्छा मार्ग है। नीति यानी नैतिकता से जो आता है, नीति से नैतिकता आती है। नीति अर्थात सही मार्ग, सही दृष्टि और रुचि जो केवल आकर्षित करे। तो प्रहलाद, ध्रुव महाराज ने सुनीति को चुना। सुनीति ने अच्छी तरह से उन्हें मार्गदर्शन दिया। तो भक्ति के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। अगर सही मार्गदर्शन नहीं है, मान लीजिए ध्रुव महाराज को उस समय सुनीति कहती कि ये बहुत गलत है, तुम्हारी जो माँ ने किया है कोई बहुत गलत है, ये लो तलवार, जाओ अंधेरे में, जाओ जब सो रही हो तो काट डालना उसको, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अच्छी बात, सही मार्गदर्शन। तो भक्ति मार्ग में हमें सही मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो बहुत सारी पूतनाएं हैं भक्ति में जो हमें मार डालने के लिए तैयार है। पूतना क्या कर रही थी? पूतना क्या करती थी? छोटे से बच्चों को मारती थी। वो दक्ष थी। लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं ना किसी किसी चीज में। पूतना ने बच्चों को मारने में स्पेशलाइजेशन किया था। बहुत तरीके थे उसके पास बच्चों को मारने के लिए। तो छोटा सा बालक होता था, छोटी बालिका होती थी, मार डालती थी पूतना कई कई तरीकों से। और इसी तरह कृष्ण को भी मारने आई थी। तो जब हम लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हम लोग भी छोटे बच्चों की तरह हैं, अर्थात हमें ज्ञान नहीं है सही मार्ग क्या है, भगवान कौन है, हमने तो देखा नहीं है भगवान को, क्या पथ है उन तक पहुंचने का, भगवान है भी या नहीं है, ये सब हमारे मन में शंकाएं हैं, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं भक्ति में। भक्ति में आप देखिए, जब छोटा बच्चा वैसे होता है साधारणतः, तो उसको बहुत शंकाएं होती हैं, उसको ज्ञान नहीं होता ठीक से क्या करना है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को सब पता होता है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, आगे चलकर ये करना है, नहीं। हाँ, लेकिन अगर छोटे बच्चों को सही सिखाया जाए तो वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक बार हम बेलगाम में मंदिर में थे, तो हमारे मंदिर में दीवारों पर कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, कुछ श्लोक लगे हैं और उन श्लोकों का अनुवाद है। ऊपर फोटो है, नीचे श्लोक और अनुवाद हैं। तो एक बार हमने देखा कि कुछ बच्चे, स्कूल के बच्चे थे, वो ऐसे घूम रहे थे, अचानक एक बोर्ड के सामने वो बैठ गए, उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बुक निकाली और सब लिखने लगे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी बात, क्योंकि हम लोग तो रोज वो श्लोक पढ़ते हैं इसलिए हमें कोई महत्वपूर्ण नहीं लगे। लेकिन हमने कहा बाकी सारे को छोड़कर एक श्लोक के पीछे बच्चे सब अपनी बुक निकाल के बैठ गए और ऐसे पूरा लिख रहे हैं, तो ये क्या है, किसको देख रहे हैं? तो हमने देखा कि एक श्लोक को लिख रहे हैं। तो हमने बच्चों से पूछा, और हम लोगों ने क्या किया, हर एक श्लोक को एक टाइटल दिया, एक उसको शीर्षक दिया है, जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी इत्यादि, ऐसे ऐसे शीर्षक है। तो हमने उनसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें जो आप लोग इतना लिख रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा था, उसने कहा वो देखिए क्या लिखा है वहां पर। तो हमने देखा तो हमें तो कुछ, हम तो रोज देख रहे हैं इसलिए कोई विशेष चीज दिखी नहीं। हमने कहा क्या लिखा है? उन्होंने कहा देखिए लिखा है मनुष्य जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो देखिए बच्चों को अगर सही निर्देश दिए जाएं तो बच्चे स्वीकार करते हैं, वो तुरंत स्वीकार। हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे, रोज उसको देखते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है, लेकिन बच्चों ने देखा तुरंत लिखने लगे और जाकर अपने घर पर बताया होगा अपने माता पिता को, आपने ये किया नहीं किया, करिए आज से। तो बच्चे बड़ी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनको सही मार्ग मिलना चाहिए। कोई गलत दिखा देगा तो गलत जाएंगे। इसी तरह हम सब बच्चे हैं और हमें ज्ञान नहीं है भक्ति का, तो हमें कभी कभी पूतना मिल जाती है। पूतना हमारा वध कर देती है, मतलब गलत मार्ग दिखा देती है। हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं, वो गलत मार्ग दिखा देती है। तुम ही भगवान हो, हम सब भगवान हैं, कोई चिंता मत करो, अभी तुम भूल गए हो कि भगवान हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको कई लोग ऐसे मिले होंगे जो कहते हैं कि भगवान तो मनुष्यों में ही होता है, मानव में होता है, हर मानव में भगवान है, भगवान वगैरह कोई चीज़ नहीं है, बस आप एक दूसरे की सेवा करो, अच्छे कार्य करो, यही भगवान है। ऐसे बहुत सारी धारणाएं हैं, इसीलिए सही मार्ग चाहिए। हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की कि उन्होंने एकदम सही, स्पष्ट और सीधा मार्ग दिया भगवान की ओर जाने का। बहुत सरल, स्पष्ट, सीधा मार्ग, भगवान कौन है और उन तक कैसे पहुंचना। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास भारत से कोई त्रिवेदी चतुर्वेदी आए, अर्थात तीन वेदों चार वेदों को पढ़े हुए कुछ लोग आए। तो प्रभुपाद से सब बातचीत कर रहे थे, कोई कह रहे थे मैं चतुर्वेदी हूँ, कोई कह रहे थे त्रिवेदी हूँ। वैसे आजकल तो केवल ये नाम रह गए हैं, मगर अर्थ ये होता था त्रिवेदी यानी जिसने तीन वेद पढ़े हैं, चतुर्वेदी यानी चार वेद पढ़े हैं। आजकल तो चतुर्वेदी पान बेचते हैं, तो इसीलिए आजकल का बात नहीं है, लेकिन ये पहले के समय में लोग हुआ करते। आपने देखा आजकल ज़्यादातर चतुर्वेदी त्रिवेदी पान लगाते हैं, तो शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं, उनको ये पता है कि पान को तीन तरह से कैसे मोड़ना है और चार तरह से कैसे मोड़ना है, इसीलिए वो चतुर्वेदी और त्रिवेदी हैं आजकल। तो प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने सुना थोड़ा बहुत कुछ कह रहे थे, शास्त्र है, ये है, वो है, वेद इत्यादि। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान कौन है? बस प्रभुपाद ने ये पूछा, ये बताइए भगवान कौन है। तो अब ये लोग चतुर्वेदी त्रिवेदी वेदों को पढ़े हुए हैं, श्लोकों को जानते हैं, उपनिषद जानते हैं। जब प्रभुपाद ने एक प्रश्न पूछा बताइए भगवान कौन है, तो कहने लगे स्वामी जी भगवान की व्याख्या करना बड़ा कठिन है, भगवान को समझना बड़ा कठिन है, भगवान कौन है ये बताना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा ठीक है रुको, एक छोटी बच्ची उधर खेल रही थी उसको बुलाया, इधर आओ। तो छोटी सी बच्ची भागकर प्रभुपाद के पास आई, तो प्रभुपाद ने पूछा बताओ भगवान कौन है? उसने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने कहा क्या फायदा तुम्हारे वेद पढ़ने का, देखो ये बच्ची ज्यादा जानती है तुमसे। उनसे पूछा भगवान कौन है, ओ बड़ी भगवान की व्याख्या कठिन है, कौन है बताना। बच्ची ने बोला भगवान कृष्ण है, सरल। तो इसीलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमें स्पष्ट, सीधा, सरल मार्ग मिला है भक्ति का, इसीलिए हम उसके महत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए भक्तों के महत्व को नहीं जानते हैं, संघ के महत्व को नहीं जानते। तो जीवन में सही मार्ग निर्देशन बहुत आवश्यक है, इसीलिए भक्ति के 64 गुणों का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी, आप सब ने तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है ना, बहुत लोगों ने एग्जाम भी दिया है हमने सुना है, हाँ। तो आपसे पूछते हैं कि 64 गुणों में से पहले लक्षणों में से पहले पांच कौन से हैं भक्ति के, बताइए। भक्ति शास्त्री आप सब हो रहे हैं, एग्जाम दिया आपने, पहले पांच कौन से हैं, पहला कौन सा है? यस प्रभु जी, एक पहला बस, गुरुपाद आश्रय, गुरु की शरण में जाना। आप लोगों ने एग्जाम कैसे दिया है पता चल रहा है, आएंगे श्री चैतन्य प्रभु तो बात करेंगे उनसे। 64 गुण पढ़े थे कि नहीं आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े है ना? पहला है गुरु का आश्रय लेना, गुरुपाद आश्रय। दूसरा उनसे दीक्षा लेना। तीसरा उनकी सेवा करना। चौथा उनके मार्ग निर्देशन में पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना। तो ये जो पहले ही लक्षण है ये केवल गुरु के लिए है, सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना। और कौन गुरु? कोई बोगस गुरु नहीं जो 5,000 रुपए लेकर दर्शन देता है, वो गुरु नहीं। ऐसे बहुत सारे भारत में गुरु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनके दर्शन के लिए 5,000, चरण दर्शन के लिए 10,000, मंत्र दीक्षा के लिए 50,000 और आपको भगवान बनाने के लिए 1,00,000। बताइए 1,00,000 में भगवान बन रहे हैं सब। तो ये नहीं, गुरुपाद आश्रय सही गुरु, बोगस गुरु नहीं, झूठा गुरु नहीं। तो भक्ति में सबसे पहले हमें एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, एक गुरु के मार्ग निर्देशन में आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और गुरु कौन हो सकता है, किसे गुरु कहते हैं? पहला चीज, उसका पहला लक्षण, वो भक्त होना चाहिए। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो कोई भी गुणों को अपने अंदर धारण कर ले वो गुरु हो ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे किसी भी वर्ण में किसी भी स्थान पर उसने जन्म लिया हो, कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है। जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। किव विप्र किव न्यासी शूद्र के निनाए, चैतन्य महाप्रभु ने शूद्र भी होने दो उसको, किसी परिवार में जन्मा हो, लेकिन अगर भगवान का भक्त है, कृष्ण तत्व वेत्ता, वो गुरु हो सकता है, सही गुरु है। तो गुरु के पहली योग्यता है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसे परंपरा में होना चाहिए। परंपरा बहुत आवश्यक है। 4 परंपराओं की बात अभी कल भी हुई थी। श्री कृष्ण ने 4 परंपराएं प्रारंभ की, 1 ब्रह्मा जी से, दूसरी लक्ष्मी जी से, तीसरी शिव जी से और चौथी 4 कुमारों से। भगवान ने स्वयं इनको ज्ञान दिया और फिर इन्होंने आगे उस ज्ञान को बढ़ाया। जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी से फिर आगे ये परंपरा चलती रही। तो ऐसे इसको परंपरा कहते हैं। तो वो परंपरा में होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि अचानक उसके मन में आया, एक दिन उठकर बैठ गया कि मैं गुरु हूँ और फिर सब लोग आने लगे, उसको स्वीकार कर लिया। नहीं, भगवान का भक्त होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। तीसरा लक्षण, आत्मसंयमी होना चाहिए। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ऐसे कोई गुरु मिले जिनमें ये लक्षण नहीं है, उनको गुरु स्वीकार नहीं करना। वो भक्त नहीं है, परंपरा में नहीं है, आत्मसंयमी नहीं है, आत्मसंयम नहीं है उसमें, तब फिर वो परंपरा में नहीं हो, तब वो गुरु नहीं बन सकता। और चौथा लक्षण, वो जैसा उसने बोलता है वैसा ही वो आचरण करता है, आचार्य है। आचार्य शब्द कैसे आता है? वो व्यक्ति जो बोलता है वही आचरण करता है, उसको आचार्य कहते हैं। ऐसे नहीं कि बोलता कुछ और है, आचरण कुछ और करता है। कहता है हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, घर में सारे देवी देवताओं की भक्ति करता है। कहता है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, घर में बियर बार खोल कर रखा है। आचरण, जो बोले वो करे, तो ये गुरु के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु मान सकते हैं, भगवान का भक्त हो, परंपरा में हो और साथ ही साथ आचरण ठीक करे, आत्मसंयमी हो। क्योंकि गुरु ये एक पोस्टमैन की तरह होता है। पोस्टमैन जानते हैं, डाकिया। कोई कहीं से पत्र लिखता है वो वहां पर दयाल देता है, डाकिया उसी पत्र को बिना खोले जैसा है वैसा ही आप तक लाके दे देता है। ये गुरु है, जो भगवान का संदेश है जैसा है वैसा आपको लाके दे दिया। जशी आहे तशी, है ना, भगवद गीता एज इट इज, ये गुरु हैं। जब कोई अपने मन की बात कहने लगे तब फिर वो गुरु नहीं हो सकता। जैसे भगवद गीता के कई संस्करण हैं और उसमें लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, एक टीका में वो लिखते हैं कि दरअसल भगवद गीता कुरुक्षेत्र का अर्थ है हमारा शरीर, पांडवों का अर्थ है हमारी पांच इंद्रियां, कौरवों का अर्थ है हमारी इच्छाएं। तो इसके द्वारा वो क्या स्थापित कर रहे हैं कि दरअसल कभी महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो ऐसी धारणाएं नहीं, इसीलिए प्रामाणिक गुरु, सही मार्गदर्शन चाहिए। हम जीवन में अपने आप को बड़े भाग्यवान हमें समझना चाहिए अगर हमें प्रामाणिक मार्गदर्शन मिल रहा है। अगर प्रामाणिक नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, केवल भ्रमित होंगे जीवन में। क्या प्राप्त होगा जीवन में? जैसा हमारे मन में आएगा हम वैसा कार्य करेंगे, और निश्चित है कि वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी भक्त नहीं है, हमारे मन में भक्ति नहीं है, हमारा मन भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए भक्ति में। क्यों नहीं मांगना चाहिए भगवान से? क्योंकि जो भी कुछ हम मांगेंगे भगवान से वो भौतिक दूषण से पूर्ण होगा, और जो कुछ भगवान हमें देंगे बिना मांगे वो केवल आध्यात्मिक होगा। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने राज्य दिया, मना कर रहे थे ध्रुव महाराज, भगवान ने दिया, लेकिन उससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हुई। तो इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए। तो हमारे हृदय में भौतिक दूषण, भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं, और ऐसी भौतिक इच्छाओं को लेकर जब हम अपने मन से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित वो हमारे पतन का कारण बनता है। लेकिन वही जब हम किसी गुरु के मार्ग निर्देशन में कार्य करते हैं तो फिर वो हमें मुक्ति का द्वार खोलता है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के पास केवल भक्ति करने के लिए जाना चाहिए और बाकी सारे कार्य अपने आप। समर्पण का अर्थ है कि गुरु से सब चीजों में हमें मार्ग निर्देशन लेना चाहिए और तब जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसे भक्ति का मार्ग कहते हैं, सबसे पहला है। तो सही मार्ग निर्देशन सुनीति ने दिया। आप लोगों को जीवन में चुनाव करना है, सुरुचि चाहिए या सुनीति। सुरुचि केवल कष्ट देगी अंत में, शुरुआत में बड़ी आकर्षक लग सकती है, लेकिन सुनीति शुरुआत में कष्ट है। जैसे ध्रुव महाराज को तपस्या करने के लिए कहा, जंगल में जाना, कितना कष्ट है छोटे से 5 साल के बालक के लिए। तो सुनीति में शुरुआत में कष्ट है लेकिन अंत में केवल सुख, परम सुख। सुरुचि शुरुआत में आकर्षक है, अंत में कष्ट। तो चुनाव हमें करना है, हमें सुनीति चाहिए या सुरुचि। सुरुचि, सुनीति। तो ध्रुव महाराज चल दिए, माता ने कह दिया जाओ। मैंने सुना है, उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलते हैं, उन्होंने कहा मैंने सुना है लोग जंगल में वनों में उनको ढूंढते हैं, तो तुम भी चले जाओ। तो चल दिए। अब ध्रुव महाराज जा रहे हैं, पहला चीज उन्हें सही मार्ग निर्देशन मिला, और दूसरा चीज अब उन्हें संग मिलेगा। भक्ति के नियम क्या हैं? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। पहले श्रद्धा। तो ध्रुव महाराज ने सुनीति के शब्दों में श्रद्धा दिखलाई कि हां, उसने कहा वन में जाओ भगवान मिलेंगे, मान लिया, चल दिए, ये श्रद्धा है। इसी तरह आप लोग भी जब भक्ति में आए हैं, किसी ना किसी ने आपको मार्ग दिखलाया कि आओ उधर चलो, वो प्रवचन सुनो, अच्छा होगा, ये करो, भक्ति करो, जपा करो, हमने शुरू कर दिया। तो श्रद्धा दिखलाई हमने। श्रद्धा नहीं होती तो आज आप लोग यहां नहीं बैठे होते, श्रद्धा नहीं होती तो हम जप नहीं करते। श्रद्धा है इसीलिए ये कर रहे हैं। तो आदर श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, ध्रुव महाराज ने दिखलाई। और उसके बाद ये 9 सीढ़ियां हैं श्री कृष्ण तक पहुंचने की, जिनमें सबसे पहली है श्रद्धा, आदो श्रद्धा। आदो मतलब सबसे पहले। तो ध्रुव महाराज ने श्रद्धा दिखलाई, अब वन की ओर चल दिए और वहां पर उनको नारद मुनि मिले। भागवत में लिखा है कि नारद मुनि ने कहीं से सुन लिया। कहां से सुन लिया? अभी अभी तो हुआ है। नारद मुनि को कैसे पता चला बताइए? हाँ, कैसे बताया? भगवान ने फोन किया, मोबाइल किया था। 13 कैमरे लगाए हुए हैं। कैमरे लगे हैं ना, सुबह देखा था हम लोगों ने, सुना था। तो उनमें से एक कैमरा है परमात्मा। तो यहां से कैमरे से रिकॉर्ड हुआ और उधर सामने दिख गया नारद मुनि को कैमरे में। अच्छा, नारद को ही क्यों दिखा? बाकी हम लोगों को तो कभी कैमरा दिखता नहीं, अंदर से परमात्मा क्या कर रहे हैं। देखा आपने कभी? कभी आपसे परमात्मा ने बात की? कभी बताया कि देखो वहां वहां पर ऐसे हो रहा है, दुनिया के उस कोने में एक माता ने अपने पुत्र को बहुत डांट दिया, अभी वो जंगल में जा रहा है छोटा सा बच्चा? आप लोगों को दिखा कभी? नारद मुनि को कैसे दिख गया? भक्त है। तो भक्त मतलब जिनका संपर्क परमात्मा से होता है, परमात्मा समाहितः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है भक्ति के द्वारा, उसने परमात्मा से संपर्क जोड़ लिया है। तो इसीलिए भक्त केवल परमात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। परमात्मा सबसे बात करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भक्तों से बात करते हैं, दूसरे सुनते नहीं है, बस यही तकलीफ है। तो परमात्मा के द्वारा पता चल गया नारद मुनि को कि एक छोटा सा बालक 5 साल का तपस्या करने जा रहा है, जाओ उसको ज्ञान दो। तो इसे साधु संघ कहते हैं। जब हमारे हृदय में तीव्रता होती है भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान स्वयं किसी गुरु को भेज देते हैं। जब तक तीव्रता नहीं है, जब तक हम भक्ति नहीं करना चाहते, जब तक भगवान को पाने की बड़ी तीव्र कामना नहीं है, भगवान व्यवस्था नहीं करते हैं गुरु की। हम बोलते रहते हैं अरे अरे अरे, लेकिन जब तीव्रता हो जाती है भगवान स्वयं भेज देते हैं गुरु को, जैसे नारद मुनि को भेज दिया, जाओ ज्ञान दो उनको। तो नारद मुनि आ गए। तो इसीलिए हमारे हृदय में तीव्रता चाहिए ताकि भगवान व्यवस्था कर दें। तो नारद मुनि आए, इसे साधु संग कहते हैं। ये कृष्ण तक जाने की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या थी? श्रद्धा। तो अब श्रद्धा हो गई, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। अब नारद मुनि मिले। नारद मुनि साधु हैं, भक्त हैं। और नारद मुनि ने देखा छोटा सा बालक है, सोचा पहले इसकी परीक्षा ले लूं, ज्ञान बाद में दूंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो बालक, अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है, 5 साल का बच्चा तो खेलता है, अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है। और जो तुम तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी माता ने कहा तपस्या के लिए ये मार्ग बहुत कठिन है, बड़े बड़े योगी प्रयास करते हैं, कई कई हजार वर्षों तक इस तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत अपने मन को वश में करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, भगवान को नहीं पा सकते। और फिर तुम तो छोटे से बालक हो, तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है, ये कहां तुम तपस्या करने जा रहे हो? और फिर अगर कोई बड़े थोड़ा कुछ कह भी दें, डांट दें, तो उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमें पता है तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय सहन नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं जो ब्राह्मण होते हैं वो शरीर का कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं, क्षत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकते। शरीर पे कितने भी घाव आ जाएं, ऊपर से नीचे तक हाथ कट जाए, पांव कट जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपमान नहीं करना। अपमान किया तो वो सहन नहीं। तो ध्रुव महाराज भी क्षत्रिय थे, अपमान सहन नहीं हुआ उनसे। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम क्षत्रिय हो लेकिन अभी बच्चे हो, जाओ, ये सब इतना ज्यादा दिल पर नहीं लगाना चाहिए, जाओ वापस जाओ। तो ये परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना ये स्ट्रांग है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तब हमारी परीक्षा होती है। पहले कैसे परीक्षा होती है, हम मंदिर आना चाहते हैं, भक्तों से सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, सब होता है, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं, कोई रोक लेता है, कोई कुछ हो जाता है, तो ये हमारे लिए परीक्षा है। तो नारद मुनि परीक्षा ले रहे थे, और गुरु को परीक्षा लेने का अधिकार है। तो नारद मुनि देख रहे थे कितना ये विश्वास है इसको। तो हमारी भी कभी कभी परीक्षा होती है, भक्ति में कष्ट आ जाते हैं, हम मंदिर आना शुरू करते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे क्या फायदा ऐसे मंदिर जाने का। हमारे मंदिर में एक भक्त आया करते थे, बहुत अच्छे भक्त, तो लोगों ने उनसे, उनको थोड़ा व्यापार में नुकसान हो गया भक्त बनने के बाद, तो लोगों ने कहा देखो तुमने अपनी कुल देवी का अपमान किया कृष्ण की भक्ति करके, कुल देवी की भक्ति छोड़ दी, कृष्ण की भक्ति की, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो बहुत बहुत जब लोगों ने बोला तब आके परेशान होकर उनसे पूछने लगे, प्रभु जी सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कुल देवी का अपमान कर दिया कृष्ण की भक्ति करके, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि कुल देवी का अपमान नहीं, कुल देवी बड़ी प्रसन्न है, इसीलिए आपको और ज़्यादा कृष्ण की ओर लगा रही है। तो ये गलत धारणाएं लोग फैला देते हैं, तो घबरा जाते हैं। तो ये परीक्षा थी उनकी, और सच बताते हैं आपको, ये कुछ समय तक चली, कुछ वर्षों तक बहुत कष्ट हुआ उन्हें, लेकिन आज वो बहुत सुखी हैं। आज भी उन्होंने वो देवी की भक्ति नहीं की, आज भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, लेकिन आज भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़े सुखी हैं। हाँ, लेकिन कुछ वर्षों तक बड़ी परीक्षा हुई, वो भी हिल गए थे, सोच रहे थे क्या करूं, वापस वही चीज शुरू कर दूं। तो ये परीक्षा होती है हमारी कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितना कृष्ण को चाहते हैं। तो ध्रुव महाराज की परीक्षा हुई। तो आदव श्रद्धा तथा साधु संग, और तीसरी सीढ़ी अब आने वाली है। जब परीक्षा हो गई तब नारद मुनि से ध्रुव महाराज ने क्या कहा, ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया, नारद मुनि आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप अलग अलग जगह घूमते रहते हैं अपनी वीणा बजाते हुए, ध्रुव महाराज 5 साल के बालक उनको कहते हैं, आप अलग अलग जगह वीणा बजाते हुए घूमते रहते हैं, तो अगर आप मुझे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बता सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हरे कृष्णा मैं जा रहा हूं। नारद मुनि हैरान हो गए, इतना छोटा बच्चा, इतनी दृढ़ता इसके अंदर भगवान को पाने की। तब नारद मुनि ने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा तुम्हारी माता सुनीति ने जो तुम्हें बताया है वही सही मार्ग है, उसी मार्ग पर चलो, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, और मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करता हूं। और उस समय उन्होंने ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र प्रदान किया, कहा इस मंत्र का जाप करो, मधुवन में चले जाओ, जमुना के किनारे बहुत सुंदर वन है, जाना जमुना में स्नान करना, और फिर उसके बाद बड़े ध्यान से कृष्ण का स्मरण करते हुए इस मंत्र को उच्चारण करना। तो ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया। तो ये तीसरी सीढ़ी है कृष्ण की ओर जाने की। पहली क्या थी, श्रद्धा, दूसरा और तीसरी भजन क्रिया। भजन क्रिया अर्थात कैसे भक्ति करनी है ये मार्ग गुरु देते हैं। नारद मुनि ने ये मार्ग दिया कि ये लो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मधुवन में जाकर तपस्या करो, जाप करो। तो भक्ति का मार्ग भजन क्रिया उनको दे दी गई। तो ध्रुव महाराज को भजन क्रिया मिली। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भजन क्रिया दी है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। तो जैसे नारद मुनि ने ध्रुव को दिए, ध्रुव ने उसको बड़े गंभीरता से श्रद्धा से स्वीकार किया, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने हम सबको ये मार्ग दिया है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अच्छा, प्रभुपाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं दिया, ये भी तो कृष्ण का ही मंत्र है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दिया? क्योंकि इस कलयुग के लिए यही एक मंत्र है। ध्रुव महाराज कलयुग में नहीं थे, अगर कलयुग में आए होते तो उन्हें भी हरे कृष्ण महामंत्र ही दिया जाता, उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं दिया जाता। लेकिन ध्रुव महाराज सतयुग में थे, अब है कलयुग। तो कोई कह सकता है कि क्या अलग अलग युग होने से मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है? ऐसा है क्या? आज अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कहेंगे तो क्या हमें लाभ नहीं होगा? बताइए, लाभ होगा या नहीं? लाभ होगा। तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कहते हैं? उससे ज्यादा लाभ होगा। ओके, और हम उस मंत्र के, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र के भी लायक नहीं हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, बहुत अच्छा। और ये जो मंत्र हैं ये दवाई के समान हैं। अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाई होती है। जब आप दवाई की दुकान में जाते हैं तो आपको कितनी सारी दवाई दिखाई देती है, लेकिन आपके लिए वो सारी दवाइयां नहीं बनी है, आपके लिए एक ही दवाई होती है। मान लीजिए आपको सरदर्द है, जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, डायबिटीज की, सबकी दवाइयां दिखाई देंगी। तो क्या वो सब दवाइयां नहीं है? दवाइयां हैं। क्या वो प्रभावी नहीं है? प्रभावी है। लेकिन क्या वो आपके लिए है? आपके लिए नहीं है। इसी तरह ये सारे मंत्र प्रभावी हैं, जो भी कृष्ण के नाम के मंत्र हैं वो सब प्रभावी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी प्रभावी है, लेकिन इस कलयुग में जो हमारी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र एक दवाई है। जैसे सरदर्द की दवाई, आपको सरदर्द हुआ है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे तो ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हम लोग, और चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण हैं इस मंत्र को हमें दिया है, तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग में। दूसरा कारण, कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। तो नारद मुनि ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि कलयुग में इन लोगों का क्या होगा, ये ना तपस्या कर सकते हैं ना यज्ञ कर सकते हैं, कोई शक्ति नहीं है इनके अंदर, कलयुग के लोग हैं। कलयुग के लोग कैसे हैं मालूम है? जैसे खटारा गाड़ी, खटारा जानते हैं आप लोग, धक्का स्टार्टर, पहले हुआ करती थी, आजकल बहुत कम दिखती हैं। पहले तो हर घर के बाहर खड़ी रहती थी, वो लोग रोज सुबह धक्का मारते थे, फिएट हो या एम्बेसडर हो या पता नहीं कौन कौन सी हुआ करती थी, है ना, क्योंकि लोग एक ही गाड़ी जीवन भर रखते थे, आजकल तो दो साल में चेंज कर लेते हैं, तो वो धक्का स्टार्टर। तो हमारी जो कलयुग की बॉडीज हैं ये धक्का स्टार्टर हैं, खटारा गाड़ियां हैं, बड़ी देर से स्टार्ट होती हैं, है ना, उसको बटन देते रहो खिच 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 खिच, आवाज आती थी ना पहले। तो इसीलिए इसके लिए, इस गाड़ी के लिए, इस खटारा गाड़ी के लिए, इस रोग के लिए जो दवाई दी गई है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि हाँ कलयुग में सबके है, लेकिन केवल मंत्र का, इस मंत्र का, ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया कि इस महामंत्र का उच्चारण करने से ही ये जो खटारा गाड़ी है मर्सिडीज में बदल जाएगी, मतलब उद्धार हो जाएगा। और यही बात भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कि कृष्ण का कीर्तन करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हम लोग इस महामंत्र का जप करते हैं। तो इस मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को दे दिया, तो अब तीन सीढ़ियां हो गई हैं कृष्ण तक जाने के लिए। श्रद्धा थी, किस चीज में श्रद्धा रखी ध्रुव महाराज ने? हाँ, माँ के वचनों में हमें किस चीज में श्रद्धा रखनी है? गुरु के वचनों में, प्रभुपाद के शब्दों में, शास्त्रों में, बहुत अच्छा। दूसरी सीढ़ी है साधु संग। जैसे ध्रुव महाराज को कौन मिले, हम लोगों को कौन मिले हैं? श्रील प्रभुपाद। तो हमें, और अभी तो प्रभुपाद नहीं है, है? अभी कहाँ है, है? देखा आपने प्रभुपाद को? उनका लिटरेचर है, ओके। और उनके शिष्य हैं, और हाँ, वो लिटरेचर उसमें, हाँ जीबीसी हैं, ठीक है। उनके शिष्य हैं, बुक्स हैं, और मंदिर हैं, और हाँ प्रभुपाद हैं या नहीं है? हैं, मिले हो आप लोग? कहाँ है प्रभुपाद? हम लोग ऐसे ही रोज गाते रहते हैं चोर जोर से, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, गुरु पूजा करते हैं। प्रभुपाद हैं, हाँ अभी अपने वपु रूप में नहीं है, लेकिन वाणी के रूप में है। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के रूप में हैं, अपने बुक्स के रूप में हैं, प्रभुपाद विग्रह के रूप में हैं, और ही नहीं, ये सारी इस्कॉन संस्था उनका शरीर है, तो इस संस्था के रूप में हैं। तो आज भी प्रभुपाद हम सब के बीच में विद्यमान हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो भक्तों ने देखी है कि अगर श्रद्धा से कभी भी श्रील प्रभुपाद के कोई भी ग्रंथ को लेकर मन में अगर कोई प्रश्न है आपके, आप श्रील प्रभुपाद जी की बुक लीजिए, कोई भी पन्ना खोल दीजिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो कौन कह सकता है प्रभुपाद नहीं है? उत्तर देते हैं, और ये कई भक्तों का अनुभव है, एक का नहीं, कई भक्तों का। मन में कोई प्रश्न होता है, वो ऐसे केवल बुक खोलते हैं, उसी तात्पर्य में वहीं सामने उनके प्रश्न का उत्तर होता है। तो प्रभुपाद हैं, तभी तो वो जानते कि ये प्रश्न है मन में, अच्छा ये उत्तर है, उत्तर देते हैं। वैसे अगर हमें मित्रता करनी है तो ग्रंथों से मित्रता कर लेनी चाहिए। भगवद गीता, भागवत और प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए इतने सारे ग्रंथ सबसे अच्छे मित्र हैं। ये बातें करते हैं हमसे, अगर हम उनसे बातें करें, हम अच्छी तरह उनको पढ़ें, तो इसलिए मित्रता ग्रंथों से करनी चाहिए और भक्तों से निश्चित। तो अब ये दूसरा था साधु संग, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरी सीढ़ी भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में क्या दिया नारद मुनि ने? हाँ, मंत्र दिया। और प्रभुपाद ने हमें क्या दिया? हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो अभी तक हम लोग तीन सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आप सब तीन सीढ़ी भगवान के निकट आ गए, पक्का श्रद्धा है सब में निश्चित, ये मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं, हाँ या ना? ओके, ये जानते हैं कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा हैं, हाँ या ना? हाँ, कहना बड़ा सरल है। खैर, कम से कम अगर हम लोग ये भी माने कि कृष्ण भगवान हैं, वही एक भगवान है, और भक्ति के द्वारा उन तक पहुंचा जा सकता है, तो भी बहुत है। और तीसरा में अब भजन क्रिया, श्रद्धा है, साधु संग मिला। साधु संग कैसे मिल रहा है हमें इस्कॉन संस्था में? भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं, श्रील प्रभुपाद खुद ग्रंथों के रूप में, विग्रह के रूप में, तो हमें साधु संग मिल रहा है। और फिर भजन क्रिया, हमारे लिए भजन क्रिया क्या है? एक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दूसरा नाम संकीर्तन, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नाम संकीर्तन ही है, और क्या? पहला, दूसरा चार नियमों का पालन करना। कौन कौन से नियम है राजवीर प्रभु? वेरी गुड, चार नियमों का पालन। ये किसी शास्त्र में दिए गए कि ऐसे ही प्रभुपाद ने मन से बना दिया? भागवत के पहले ही स्कंद में दिए गए हैं। वेरी गुड, ओके। तो ये पहला क्या था भजन क्रिया में, नाम जप करना या नाम कीर्तन करना, दूसरा नियम का पालन, और भजन क्रिया क्या है, भगवान का प्रसाद लेना, वेरी गुड, और कुछ नहीं लेना। हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, हम लोग प्रसादेटेरियन हैं, बस केवल प्रसाद खाते हैं, फिर प्रसाद कुछ भी हो, मंचूरी हो या फ्रूट सलाद हो, गुलाब जामुन हो। हमारे ऐसा होता है सब जगह पर, ज़्यादातर मठों में एकादशी के दिन बहुत कम खाया जाता है, केवल फ्रूट आदि ऐसे कुछ, लेकिन हमारे यहाँ तो बाकी दिनों में 4 डिश, एकादशी पे 8 डिश है ना। मराठी में एक कहावत है, एकादशी दुप्पट खाशी। तो क्या होता है, जिस दिन उपवास होता है हमें लगता है उपवास है उपवास है उपवास है, ज़्यादा खाना चाहिए ज़्यादा खाना चाहिए। सो अच्छा, भजन क्रिया में ये हो गया कि हमें प्रसाद खाना है। कितने हो गए अभी तक, 3, नाम कीर्तन, 4 नियमों का पालन, प्रसाद का सेवन, और हाँ मंगल आरती आना, वेरी गुड, सुबह जल्दी उठना। जैसे आप लोग अभी कम से कम 2 दिन तो उठेंगे, हमें पता है वापस जाकर 4 दिन सो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो 2 दिन उठेंगे। मंगल आरती आना ये साधना का अंग है, तो साधना, और गुरु के आदेश का पालन करना, वेरी गुड, ये नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। 5, और विग्रहों की सेवा करना, वेरी गुड। 6, और भक्तों के संग में जप करना या भक्तों का संग करना, केवल जप ही नहीं, आप बाकी सब भी भक्तों के संग में ही करते हैं ना, प्रसाद भक्तों के संग में खाना, कीर्तन भक्तों के संग में करना, कथा भक्तों के संग में सुनना, सब भक्तों का संग, वेरी गुड। और वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना वैष्णव सेवा, हम लोग केवल यहाँ बैठकर बोलते रहते हैं, फिर समय हो जाता है हम लोग वहाँ जाते हैं तैयार सब कुछ खाने के लिए, तो वैष्णव सेवा बहुत अच्छा। और क्या अंग है भजन क्रिया के, वो तो हो गया, नाम कीर्तन कह दिया उन्होंने पहले, हाँ? शास्त्र अध्ययन, यस, शास्त्रों का अध्ययन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भजन क्रिया क्यों बनाई गई है, ये जो क्रियाएं दी गई हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमें जप करना, क्यों सुबह उठना, क्यों नियम का पालन करना है, क्यों ये नाम कीर्तन, क्यों भक्तों का संग, इसके उद्देश्य क्या है, आत्मशुद्धि, ओके, और भगवान से जुड़े रहने का एक मार्ग। हाँ माता जी, क्या बोलिए आप, जब यहां से कोई बोलते तब तो माता जी बोलते, जब माता जी को पूछे तो नहीं बोलते। हाँ, और कृष्ण को, कृष्ण का स्मरण करना, यस, भजन क्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हर समय कृष्ण का स्मरण करना, और हाँ जी मन, मन तृप्ति करना, भौतिक दृष्टि से नहीं मन की, मन में संतुष्टि लाना, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी चीज मन में संतुष्टि नहीं देती, लेकिन जब भक्ति करते हैं भजन क्रिया करते हैं तो भौतिक चीज रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत अच्छा। और क्या उद्देश्य है भजन क्रिया क्यों करनी चाहिए, भगवान का भजन एक महत्वपूर्ण कारण, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन क्रिया क्यों की जाती है, भगवान की प्रसन्न, ये आप भूल गए, ये आधार है सारी भजन क्रियाओं का, आधार यही है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जप करना किस लिए, प्रसन्नता के लिए। प्रसाद ग्रहण करना किस लिए, करते हो आप लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रसाद हम लोग अपनी प्रसन्नता, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमें सारी चीजें भगवान की प्रसन्नता के, आप अगर इससे प्रसन्न हैं तो ठीक है इसको करेंगे, तो ये भजन क्रिया है। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, और उसके बाद जो स्थिति आती है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति अर्थात हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं वो सारे चले जाते हैं। ध्रुव महाराज के हृदय में क्या अनर्थ था? वो एक राज्य पाना चाहते थे, अपने पिता को दिखाना चाहते थे कि देखो तुमसे बड़ा, तुमसे क्या, ब्रह्मा जी से भी बड़ा, तुम्हारे पिता से भी बड़ा राज्य मैं लूंगा। ये अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? क्योंकि इसमें कोई एक अपने आप को मान प्रतिष्ठा, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की बात है कि मैं कितना बड़ा राज्य लेकर दिखाता हूं। ये किसी को नीचा दिखाने की बात है, बड़े होने की बात नहीं। बड़ा होना मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, अपने पिता से बड़ा मतलब अपने पिता को नीचा दिखाना, ये अनर्थ है। और ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की, भजन क्रिया की, जैसा नारद मुनि ने बताया था, तो उनके हृदय से ही अनर्थ निकल गया। इसीलिए अगली स्थिति होती है अनर्थ निवृत्ति। तो ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया, चले गए मधुवन में। आप में से कितने लोग मधुवन गए हैं? वृंदावन में जब जाते हैं तो हम लोग मधुवन जाते हैं ना, आप गए हैं? और कोई नहीं गए आप लोग? मधुवन याद नहीं है? अच्छा, वहाँ पर अभी भी प्रहलाद महाराज का ध्रुव महाराज का एक मंदिर बना हुआ है। नीचे लवणासुर की गुफा है जहाँ लवणासुर को मारा था, है ना, याद है सब? तो वो मधुवन है, अभी भी बहुत अच्छा जगह है, जंगली है अभी भी, वहाँ पर कुछ बड़ा चीज़ बनी नहीं है। आप में से जिनको भी बैठने में तकलीफ हो पीछे बैठ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये गया लगता, इसका कुछ उद्धार होगा। हरे कृष्ण थोड़ा देखो, हरे कृष्ण, खाली वॉल्यूम बढ़ा दो उसकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको जब बहुत देर हो जाती है ना, ये भी थक जाता है। हरे कृष्ण, हाँ कुछ हिल गया शायद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही है, इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी ने माइक का इस्तेमाल नहीं किया। 7 दिन का समय था, माइक खराब हो जाता तो कितना समय चला जाता ना, है कि नहीं? परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन का समय था। अब उसमें 4 बार माइक खराब हो जाता तो बेचारे कितना श्लोक रह जाते भागवत के।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। एनीवे आप लोग को ऐसे सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है पीछे तक? प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है ना, बस ठीक है, फिर यही ऐसे ठीक है।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
नहीं नहीं, फैन बंद करोगे तो गर्मी लगेगी सब लोगों को। हम जोर से बोल देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आप लोग आगे आ सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप सब आगे आ जाइए, कुर्सियां भी आगे ले लीजिए।
हरे कृष्ण
ये डरा कर नहीं, फिर भी आप आगे आ ही जाइए, बीच में बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी है जैसे है, जहाँ है बैठे रहिए। ये भी बड़ा विचित्र है, ये अपने मन से चलता है। देखिए, इसीलिए मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये किसी की सुनता नहीं है। ओके, तो हाँ, दरवाजा बंद ही रखिए उसको, नहीं तो सारे लोगों का ध्यान बाहर जाता है। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। तो ध्रुव महाराज चले गए मधुवन में, बहुत सुंदर स्थान है आज भी वो, और अकेले थे, छोटा सा बालक, वन में कोई भय नहीं था। आप सोचिए, 5 साल का बालक भय नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? 5 साल का तो छोड़िए, आपको भी वन में भेजा जाए तो आपको भी डर लग जाएगा, कोई शेर आ जाए, कोई प्राणी आ जाए। दरअसल ऐसे हुआ था जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। ऐसा हुआ कि जब ध्रुव महाराज बड़ी कठोर तपस्या करने लगे तो ऊपर से देवता सब घबरा गए कि अरे अरे, ये इतनी तपस्या कर रहा है, क्या देवता बनेगा, इंद्र बनेगा? तो इंद्र आदि सारे देवता आए, अलग अलग रूप लिया और ध्रुव महाराज को डराने लगे। ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं और इधर से इंद्र आके बोल रहे हैं, पहले तो गलत संदेश देने लगे, ध्रुव तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, जल्दी जाओ घर में वापस। ध्रुव हिले नहीं, इसलिए उनका नाम ध्रुव है, जो हिलते नहीं, वैसे ही खड़े रहे, तपस्या करते रहे। फिर किसी ने कहा, तुम्हारे पिता को मार दिया गया है, राज्य में कोई राजा नहीं रहा, जाओ जल्दी वापस। कहे नहीं। फिर उसके बाद शेर आया, एकदम ऐसे, बस शेर खाने आ रहा है ध्रुव महाराज को, दिख रहा है। ध्रुव महाराज खड़े रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शेर गायब हो गया, क्योंकि शेर नहीं था, ये सब देवता परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे बहुत परीक्षा हुई ध्रुव महाराज के, लेकिन वो स्थिर रहे भक्ति में। तो ऐसे जब ध्रुव महाराज फिर मधुबन चले गए, भक्ति करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, और बहुत कड़ी तपस्या की उन्होंने। खाने के लिए पहले महीने में केवल सूखे पत्ते खाते थे, वो भी जो वृक्ष से गिर जाते थे, और कुछ ग्रहण नहीं करते थे। हम लोग तो अच्छे सॉफ्ट और फ्रेश पत्ते भी नहीं खा सकते हैं पेड़ के, लेकिन ध्रुव महाराज करते। इसलिए कह रहे हैं कि ये तपस्या का आप लोग पालन मत कीजिएगा, कर नहीं पाएंगे। तो ध्रुव महाराज करने लगे, बड़ी कड़ी तपस्या की, आगे चल के उन्होंने पत्ते खाना बंद कर दिया, केवल जल ग्रहण करते थे, फिर जल ग्रहण करना बंद कर दिया, केवल हवा पे जीते थे, फिर अंतिम महीने में सांस लेना भी बंद कर दिया, 3 या 4 दिन में एक बार जरा सी सांस लेते थे। इतनी कड़ी तपस्या देखकर सब हिल गए देवता इत्यादि। तो ध्रुव महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की, और फिर उनकी तपस्या के बल पर, उनकी भजन क्रिया के बल पर, ये भजन क्रिया है, तपस्या मतलब भजन क्रिया। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे लिए क्या भजन क्रिया है, हमारे लिए भजन क्रिया है भगवान के मंदिर आना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना, नियमों का पालन करना, यही हमारे लिए भजन क्रिया है। जो ध्रुव महाराज को लाभ मिला था पत्ते खाकर और पानी पीकर और हवा खाकर, वही लाभ हमें ये कार्य करके मिलेगा, इसीलिए ये भजन क्रिया है। तो 6 महीने उन्होंने ऐसे तपस्या की, इतनी कड़ी तपस्या, भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज की आंखें बंद थीं, उन्होंने अपने हृदय में भगवान को देखा, पहले भगवान का वही रूप उनको दिखाई दिया, चतुर्भुज रूप, पीतांबर धारण किए हुए भगवान उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने उस रूप को मन में देखा, तुरंत आंखें खोली, सामने भगवान थे वही। और अब भगवान को देखकर, छोटे बालक हैं 5 साल के, तो एकदम भावा विभोर हो गए, भगवान सामने आए हैं, क्या बोले उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों में आंसू आ गए, मुंह से आवाज नहीं निकली। और उस समय भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज को किया, और केवल वो स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, सारा हृदय शुद्ध हो गया, सारे अनर्थ चले गए। तो ये चौथी अवस्था और अनर्थ चले गए, इसका प्रमाण क्या है? ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं, स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, कि हे स्वामी कृतार्थोऽस्मि, मैं तो कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके, अब कोई वर नहीं चाहिए। ये अनर्थ निवृत्ति है कि सारे अनर्थ निकल गए उनके हृदय से, कोई कामना नहीं रही कि मुझे राज्य चाहिए। आए थे राज्य मांगने के लिए, भगवान सामने है, मांगा नहीं। मुझे राज्य चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बनना है, अपने पिता को नीचा दिखाना है, कुछ नहीं, सारे अनर्थ चले गए। शुद्ध अवस्था में स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, कोई वर नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो भक्ति की अगली अवस्था होती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। अनर्थ निवृत्ति अर्थात जितने भी हमारे हृदय में अनर्थ हैं, अर्थात अनर्थ क्या है, किससे उत्पन्न होते हैं? भौतिक इच्छाओं से। हमारे बंधन का और मुक्ति का एक ही कारण है, एक ही चीज हमें बंधन में डालती है और वही चीज मुक्ति प्रदान करती है। बड़े आश्चर्य की बात है लेकिन सत्य है, एक ही चीज, और वो है इच्छा। हमारी इच्छा पर आधारित है। देखिए, आज आप लोग यहां आए, आपकी इच्छा थी, आप कहीं और जा सकते थे। बहुत सारे भक्तों को बुलाया गया लेकिन इच्छा कुछ और थी, इच्छा। तो जीव इच्छा करता है, इस बात को जानने का प्रयास कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हमें जीवन में कष्ट क्यों होता है, भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रों में किया जाता है कि कार्य कौन करता है? जीव कार्य करता है, जो आत्मा है शुद्ध है। प्रकृति कार्य करती है, जो भगवान की शक्ति है, या भगवान कार्य करते हैं जो सारे ब्रह्मांडों को चलाते हैं। हिंदी में कहावत है, भगवान की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मतलब सब कुछ भगवान कर रहे हैं। अगर सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो फिर हमें दंड क्यों मिलता है? पाप करने का दंड हमें क्यों मिलता है? सजा हमें क्यों मिलती है? और मान लिया जाए कि भगवान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सब काम भगवान कहते प्रकृति कर रही है, जितने भी कार्य चल रहे हैं सब प्रकृति कर रही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा ये हो रहा है। अहंकार विमूढ आत्मा, ये मूर्ख व्यक्ति है जो सोचता है करता हम, मैं कर रहा हूं। तो इससे भी प्रमाणित हो गया कि व्यक्ति जीव कार्य नहीं करता। तो अगर जीव कार्य नहीं करता तो कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? दंड हमें मिलता है, कार्य प्रकृति करती है, अनुमति भगवान देते हैं, दंड हमें मिलता है। ये तो अन्याय है ना? इसका उत्तर भी शास्त्रों में दिया गया, शास्त्र स्वीकार करते हैं कि हाँ, प्रकृति ही क्रियमाणानि, प्रकृति कार्य करती है, भगवान अनुमति देते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भगवान अनुमति देते हैं। फिर जीव को दंड क्यों मिलता है? क्योंकि जीव इच्छा करता है। जब हम इच्छा करते हैं किसी कार्य के लिए, कार्य हम नहीं करते लेकिन इच्छा करते हैं, इसीलिए दंड हमें मिलता। जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं, प्रकृति उसको कार्यान्वित करती है, लेकिन दंड प्रकृति को नहीं मिल सकता क्योंकि प्रकृति केवल भगवान के आदेशानुसार कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसीलिए दंड प्रकृति को नहीं मिल सकता। भगवान भौतिक जगत के परे हैं, उनको ना दंड मिलता है ना उपहार मिलता है।
इसीलिए दंड जीव को मिलता है। और जब हम अनर्थ से भरे हुए अपने हृदय से कार्य करते हैं तो दंड के भागी होते हैं। इसीलिए हमारी मुक्ति या बंधन के बीच में एक ही चीज है, इच्छा। हमें केवल इच्छा करनी है, और करनी क्या, हमारी उतनी ही शक्ति है। जीव कुछ कर नहीं सकता इच्छा के अलावा। क्या शक्ति है आपकी? क्या आप अपने बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं? आपका शरीर है ना, रोक लीजिए अगर रोक सकते हैं तो। बूढ़े हो रहे हैं, रोक लीजिए, रोक सकते हैं। मर रहे हैं, रोक लीजिए मृत्यु को, रोक सकते हैं तो। आपका शरीर है ना, नहीं रोक सकते। इसलिए कि हमारे पास उतनी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी एक ही स्वतंत्रता है, इच्छा करना। तो जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम भगवान की भक्ति की इच्छा करते हैं तो फिर हमें भगवान की भक्ति मिलती है। अगर हम भोग करने की इच्छा करते हैं, भगवान से दूर जाने की इच्छा करते हैं, भगवान वो भी दे देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इन सब को तेषाम एवान कंपार्थम, मैं इन पर अनुकंपा करने के लिए ज्ञान देता हूँ। इनको मैं ज्ञान भी देता हूँ, विस्मृति भी देता हूँ। जो मुझे जानना चाहता है उसको मैं ज्ञान देता हूँ, जो मुझे भूलना चाहता है मैं उसे विस्मृति देता हूँ। ये भगवान है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भुला क्यों देते हैं, खुद ही भुला देते हैं और फिर कष्ट देते हैं? नहीं, आपने इच्छा की। आप इच्छा कीजिए, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज ने इच्छा की, मुझे भगवान चाहिए। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। इच्छा तीव्र थी, मार्ग सही था, निर्देशन सही था, गुरु सही थे और भक्ति की तीव्रता सही थी। इसीलिए भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने। तो ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, बहुत सुंदर वर्णन भगवान का किया गया। ध्रुव महाराज ने प्रार्थनाएं अर्पण की और उनसे कहा कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, अब मुझे हीरा मिल गया है, रत्न मिल गया है, अब मुझे नहीं चाहिए राज्य, कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरं याचे। तो कांच का टुकड़ा और हीरे में क्या अंतर है? कांच का टुकड़ा, उसकी कोई मूल्य नहीं होता। दिखने में वैसा होता है हीरे जैसा, लेकिन कोई मूल्य नहीं है। ये भौतिक जगत ये कांच के टुकड़े के समान है, और भक्ति ये हीरा है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने कांच के टुकड़े के लिए हीरे को त्याग दिया। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में, चाणक्य नीति में लिखते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो अशाश्वत चीजों के लिए शाश्वत चीज को त्याग देता है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसने हाथ में क्या पकड़ा है? अशाश्वत, समाप्त होने वाली चीज, और त्यागा किसे है? शाश्वत। तो शाश्वत जो था वो चला गया उसके हाथ से, हाथ में जो है वो भी थोड़े समय में चला जाएगा, तो फिर है ना मूर्ख व्यक्ति। अगर शाश्वत को पकड़ लेता तो फिर वो चीज कभी नहीं जाती। तो हमने कांच के टुकड़े के लिए रत्न को त्याग दिया। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचायम विस्मृतम रत्नम हरेर नामेव केवलम। अहो दुखम महादुखम, बहुत बड़े दुख की बात है। क्या दुख है? काचायम विस्मृतम रत्नम, कांच के लिए हम रत्न को भूल गए, हीरे को भूल गए। और क्या है हीरा? हरेर नामेव केवलम, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। तो हमें चुनाव करना है, हमें कांच का टुकड़ा चाहिए या रत्न चाहिए? हमें एक दिखावे की प्रसन्नता चाहिए या सच्चा सुख चाहिए?
हमें केवल एक मायावी आकर्षण चाहिए या परम सत्य चाहिए, ये हमें चुनाव करना। इस जगत का जो आकर्षण है ये समाप्त तो हो जाने वाला है, कितना समय रहेगा ये शरीर ही, कितना समय रहेगा हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी ये बातें आती हैं हम करना नहीं चाहते। हम जब छोटे थे तो हमें घरों में कहा जाता था, हमारे माता पिता कहते थे अगर कोई गलती से मरने की बात कह देता था, मरने की बात नहीं करनी चाहिए, क्यों? नहीं नहीं सत्य हो जाता है। तो वैसे भी सत्य है, परम सत्य है। कौन है ऐसा जिसको मृत्यु नहीं आती? एक बार एक स्त्री एक साधु के पास आई, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, मुझे वापस चाहिए वो। साधु ने समझाया, नहीं मानी। साधु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा, केवल एक काम करो, थोड़े से चावल मांग कर ले आओ। उसने कहा मांग कर? अरे अभी खरीद कर ले आते हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी मृत्यु हुई ही ना हो, ऐसे घर से चावल मांग कर ला, और अगर ले आओगी तो मैं वचन देता हूं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उस स्त्री गई सब घरों में, कौन सा ऐसा घर मिलेगा जहां मृत्यु नहीं हुई है, जहां कभी मृत्यु हुई ही नहीं। तो इसीलिए इस चीज को जानना चाहिए हमें कि जो सत्य है उसका सामना करना चाहिए। तो बहुत जल्द कभी भी हमें इस सत्य का सामना करना पड़ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। हम में से कोई तैयार नहीं है मृत्यु के लिए। मृत्यु ये कोई भयानक चीज नहीं है भक्त के लिए। जो भक्त नहीं है उन सारे लोगों के लिए बड़ी भयानक डरावनी चीज है मृत्यु। डरते हैं लोग, बात भी नहीं करना चाहते। क्यों डरते? ज्ञान नहीं। मृत्यु क्या है? एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना, बस। अगर हमें पता हो हम एक पुराने से घर में रह रहे हैं, टूटे फूटे घर में, और फिर अचानक एक दिन हमें कोई आए और कहे चलो निकलो इस घर से, ये लो बहुत बढ़िया नया घर, तो व्यक्ति रोएगा या प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा। यही मृत्यु है। जब शरीर आत्मा के लिए रहने योग्य नहीं रहता, प्रकृति के नियम उसको कहते हैं चलो निकलो यहां से, एक नए घर में रहो, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि रोना चाहिए? हम लोग रोते हैं, है ना? हम रोते हैं, मरना नहीं है, मरना नहीं, भगवान मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो, जो पैसा चाहिए। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सारी दुनिया को जीतना है उसे, जीता उसने सारी दुनिया को, भारत में आया। कई बार इस बात को हम बता चुके हैं, सारी दुनिया के बड़े बड़े योद्धा उसको हरा नहीं पाए, भारत के मच्छरों ने हरा दिया उसको, मलेरिया हो गया उसको। सही है, उस समय इलाज नहीं था मलेरिया का, ये तो बहुत पहले की जब एंटीबायोटिक सब रिसर्च नहीं हुए थे। तो जिस व्यक्ति को दुनिया के लोग नहीं हरा पाए, भारत के मच्छरों ने हरा दिया। कृष्ण क्या दिखाना चाहते थे? बाकी नहीं किसी से उसको मरवा सकते थे ना, इतना अपमान तो नहीं करना चाहिए था कि मच्छरों से मरवा दिया। उसकी आधी सेना को मलेरिया हो गया, मच्छरों ने काट काट के, यानी जिसको जिसकी सेना को बड़े बड़े योद्धा नहीं हरा पाते थे, भगवान ने मच्छरों को भेज दिया, मच्छरों से हरा दिया। बताइए, मच्छरों ने काट काट के आधी सेना मर गई उसकी, वो भी मर रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, वैद्य से कहा, कुछ भी करो मुझे बचाओ, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा, मैंने पूरी दुनिया जीती है, आधा साम्राज्य तुम्हारा, केवल मुझे बचा लो। डॉक्टर ने कहा नहीं कर सकता, पूरा दे दूंगा राज्य, मैं बाहर भिखारी बन के रहूंगा, तुम्हें दे दूंगा, मुझे बचा लो, डॉक्टर ने कहा नहीं कर सकता। तो उस समय अलेक्जेंडर ने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे गाड़ना मुझे। उनके धर्म में गाढ़ा जाता है तो हाथ ऐसे रखे जाते। उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे रखना। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा मैं बताना चाहता हूं दुनिया को कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जीवन भर मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया, सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन जब मरा तो खाली हाथ गया। इसीलिए कोई लाभ नहीं है जीवन में कुछ इकट्ठा करने का। भक्ति हमें यह सिखलाती है कि ऐसे अनर्थों को दूर करें, सादा जीवन, भक्तों को सादा जीवन जीना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए। सादा जीवन का अर्थ ये नहीं होता है कि फटे हुए कपड़े पहनकर जीना। सादा जीवन का अर्थ ये होता है बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं नहीं करना, भौतिक चीजों को पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लालसा नहीं करना। हाँ, चीजें आए तो ठीक है, उनका उपयोग भगवान की सेवा में करना। चीजें नहीं आए कोई चिंता नहीं, जैसे भी कृष्ण रखे उसमें खुश रहना, ये भक्ति है। अनर्थ है हमारे अंदर, कष्ट है, दुख है, अधर्म है, काम है, इन सब को लेकर भगवान के पास जाना। एक किसी ने भजन लिखा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। उसका अर्थ है कि मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूं। तो हमारा प्रश्न यह है कि कहां जाओगे, मैली चादर तो मैली ही रहेगी, कहीं भी जाओगे केवल कृष्ण के पास आकर ही धुलेगी। वॉशिंग पाउडर इधर ही है, वॉशिंग मशीन इधर ही है, और कहीं नहीं है। तो इसलिए उन अनर्थों के साथ, उन दुर्गुणों के साथ, उन वासनाओं के साथ कृष्ण के पास आना चाहिए। भागवत कहता अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामो, आपके हृदय में कोई कामना नहीं है, अकामो या फिर सर्व कामो वा, भरा हुआ है हृदय इच्छाओं से, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, वो कुछ पाने के लिए गए थे भगवान के पास, प्रेम से नहीं गए थे, भक्ति से नहीं गए थे, कुछ पाने के लिए गए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि, अगर मोक्ष की भी कामना है तो भी यजेतः पुरुषः परम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्थिति है, जहां हमारे हृदय से अनर्थ दूर हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, भगवान की कथा सुनने से। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तय भद्राणी विधुनोति सुहृत सता। जितने भी अभद्र हैं, अनर्थ हैं, धुल जाते हैं केवल कृष्ण की कथा सुनने से। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा, तो इसीलिए कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो अब ध्रुव महाराज ने भगवान से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कांच का टुकड़ा मांगने आया था आपके पास, हीरा मिल गया है, अब कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरे पास इच्छा लेकर आए थे और मेरा कर्तव्य है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और तुमने मांगा था क्या, अपने पिता ही नहीं, उनके भी पिता ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मैं तुम्हें देता हूं। ब्रह्मा से बड़ा राज्य इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें आध्यात्मिक जगत से अपना ही धाम देता हूं। और वो धाम बना ध्रुव लोक,
जिसे हम लोग कभी कभी ध्रुव तारा भी कहते हैं, रात्रि को आपको ऊपर जाएंगे तो दिखाई देगा ध्रुव लोक। भगवान ने अपना धाम दे दिया, अपना जगत दे दिया ध्रुव महाराज को। इसीलिए जब प्रलय होती है सारे ब्रह्मांड का नाश होता है, ध्रुव लोक का नाश नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक जगत में रहकर भी आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। तो ध्रुव महाराज मना कर रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तुम माया में नहीं पड़ोगे, तुम राज्य करो। तब ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया राज्य को, नहीं तो वो सोच रहे थे कि और अभी अभी अनर्थ सारे निकले हैं, और राज्य करने लगूंगा बहुत सारे अनर्थ हो जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज को फिर उन्होंने इस तरह से राज्य करने के लिए कहा और भक्ति भी प्रदान की। तो फिर ध्रुव महाराज राज्य करने लगे, उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। ध्रुव महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। तो जब ये अनर्थ निकल जाते हैं हृदय से, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा। निष्ठा मतलब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण उसमें फिक्स हो जाती है। अनर्थ चले गए, अब केवल निष्ठा कि कृष्ण भक्ति करके ही सब कुछ मिल सकता है। और ऐसी निष्ठा के बाद फिर रुचि जागृत होती है, रुचि के बाद आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 सीढ़ियां हैं, उनकी चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए अनर्थ निवृत्ति ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छा है, फिर आगे कभी आगे इन सीढ़ियों की बात करेंगे। तो इस तरह ध्रुव महाराज ने, ध्रुव महाराज के संपर्क में, संबंध में हम देखते हैं कि संघ का कितना महत्व है। सुरुचि और सुनीति के संघ का प्रभाव हमने देखा ध्रुव महाराज पर, नारद मुनि के संघ का प्रभाव, और सुबह में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्तों को कैसे आपस में संघ में रहना चाहिए। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम माख्याति प्रच्छति भुंगते भोजेते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। तो प्रीति के ये लक्षण हैं, प्रेम के 6 लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले हमें ददाति, देना सीखना चाहिए। वही एक सबसे बड़ी तकलीफ है हम सब में, हम लेना जानते हैं, देना बहुत कम। तो क्या देना चाहिए हमें भक्तों को? क्या दे सकते हैं हम लोग भक्तों को, बताइए? ददाति क्या देना चाहिए? हाँ, प्रसाद तो भुंगते भोजयते चैव में आएगा ना, ज्ञान देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर हमें कुछ देना है तो सबसे अच्छा उपहार क्या है? ज्ञान देना है, क्योंकि बाकी उपहार अच्छे क्यों नहीं है, बताइए? बाकी उपहार 2 कारणों से अच्छे नहीं है। पहला कारण, वो शाश्वत नहीं है। आप कुछ और उपहार दे दोगे, कुछ पैसा दे दोगे, कुछ इत्यादि, ये सब तो जाने वाला है। और दूसरा, ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा, बाकी कोई चीज़ मुक्ति की ओर नहीं ले जाती, इसीलिए ज्ञान देना चाहिए। तो ददाति और प्रतिग्रहणाति, उनसे भी लेना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। गुह्यम आख्याति मतलब भक्तों को अपने हृदय की बात किसी से कहनी चाहिए और उनके हृदय की बात सुननी चाहिए। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन भक्तों को इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हृदय की बात सबसे नहीं की जाती, न्यूज़पेपर में नहीं छापी जाती, टेलीविज़न पे नहीं दी जाती। मान लीजिए किसी भक्त के हृदय में कोई कष्ट है, वो आपसे आकर कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मेरे हृदय में ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, तकलीफ़ हो रही है, तो आपको उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, पता है फला फला भक्त को ये है, नहीं।
कई लोगों की आदत होती है, वो कहते हैं आपको पता चला वो दूसरे को बताएंगे, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी से कहना नहीं, ये जो भक्त है ना इसका ऐसा ऐसा तकलीफ है, कहना नहीं किसी से। हाँ अच्छा ठीक है, फिर वो भक्त दूसरे को बोलता है देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी से कहना नहीं। हाँ तो ऐसे करके सारे पूरे ब्रह्मांड में कम से कम आश्रम में मंदिर में सब घूम जाता है और वो भक्त को पता ही नहीं जिसने उससे बात की। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब जब कोई आकर अपने मन की बात कहे तो उसको गुह्य रखना चाहिए, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर देना चाहिए, उसको सबको बता नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद ने एक समय जब प्रभुपाद जी उपस्थित थे तो उनके एक सन्यासी शिष्य थे जिन्होंने सन्यास त्याग दिया किसी कारण से, कोई गलती उनसे हो गई थी तो उन्होंने सन्यास त्याग दिया। तो उन्होंने जो गलती की थी वो केवल कुछ ही व्यक्तियों को, एक दो को पता थी और प्रभुपाद ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस व्यक्ति को पता थी उसने सब लोगों को बता दिया। तुम्हें पता है उस सन्यासी ने ऐसा ऐसा किया, तुम्हें पता है? नहीं पता, बोलना नहीं किसी को। तुम्हें पता है? बोलना नहीं किसी को। सब जगह फैल गई और जब प्रभुपाद को पता चला कि इस एक भक्त ने उस सन्यासी की वो जो बातें हुई हैं वो सबको बता दी, तो उन्होंने बुलाकर बहुत डांटा उसको, बहुत डांटा। और प्रभुपाद ने कहा कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुमने उस भक्त के वापस आने का मार्ग बंद कर दिया। कैसे बंद हो गया? मान लीजिए उससे गलती हो गई और वो छोड़कर चला गया आंदोलन को, सन्यास त्याग दिया, लेकिन ठीक है हो सकता है 4 महीने बाद 6 महीने बाद साल भर बाद फिर से भक्ति में आ जाए, फिर से जप करने लगे। लेकिन जब उस समय आएगा और उसको पता चलेगा कि मैं जहां आ रहा हूं यहां सब भक्तों को मालूम है मैंने क्या किया है, तो फिर वो कभी नहीं आ पाएगा। तो प्रभुपाद ने बहुत डांटा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने उसके वापस आने का मार्ग बंद कर दिया। और प्रभुपाद उसको बार बार उस भक्त को वापस बुलाया करते थे, तुम आ जाओ मुझे छोड़ के नहीं जाना, वापस आओ। तो ऐसे ये गुह्यम आख्याति है कि हमसे कोई आकर अपने मन की बात कहे तो हमें उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में छाप नहीं देना चाहिए, राइट, या किसी दूसरे को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ एक अवस्था में बता सकते हैं, किसी ने आकर एकदम गुह्य बात कही है उसको एक अवस्था में किसी दूसरे को बताया जा सकता है। कौन सी अवस्था है, कब बताना चाहिए? जब वो चीज बताने से जिसने वो चीज बताई है उसका लाभ होता हो। जैसे मान लीजिए किसी ने आकर आपको कुछ बताया कि मैंने ऐसी ऐसी गलती कर दी, तो जो अथॉरिटीज हैं उनको आप अगर वो चीज़ नहीं बताएंगे मंदिर में, तो हो सकता है कि वो भक्त जिसने गलती की है उसका लाभ नहीं होगा। तो हमें ऐसे समय में केवल, और वो भी बड़े गुप्त तरीके से, केवल एक व्यक्ति को बताना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये जान लीजिए कि जब कोई भक्त आकर आपको अपने हृदय की बात बताए तो उसको पैम्फलेट बनाकर, न्यूज़पेपर बनाकर, टीवी में नहीं डालना है, अर्थात किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या बात की, तब वो भक्त बड़े आसानी से अपने हृदय को खोल सकेगा। देखिए हम सबको जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे हम सब कुछ कह सकें और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम सबके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। बड़े निकट का भी संबंध जिससे होता है उससे भी हम कुछ बात छुपा कर रखते हैं, उसको भी हम पूरी बात नहीं बताते। जैसे पति होता है वो पत्नी को सारा कितना धन है वो नहीं बताता है ना सही है ना, माता जी लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं कि बताया नहीं है पूरा। हमें कई बार कई भक्त मिलते हैं ऐसे, वो बोलते हैं कि वो डोनेशन देते हैं और बोलते हैं प्रभु जी घर में नहीं बताना। नहीं क्यों, घर में क्यों नहीं बता? नहीं उसको पता नहीं है हमने आपको दिया है, अब बोलना मत तो ऐसा संबंध है ही नहीं जहां बहुत खुली तरीके से हम अपने हृदय को खोल कर बात कर सकें। और इसीलिए जीवन में कष्ट है, इसीलिए तकलीफें हैं। एक व्यक्ति केवल अगर जीवन में मिल जाए जिसके सामने हम बड़े आसानी से अपने हृदय को खोल सके कि मेरे हृदय में ये कष्ट है, ये तकलीफ है, ये हो, और विश्वास हो कि ये बात इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगी, ऐसे एक व्यक्ति की कामना है। और ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो इसीलिए ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात बताना चाहिए। इससे संबंध अच्छे होते हैं, इससे हमारे हृदय में जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, वो निकल जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं केवल बोलने से तकलीफ कम हो जाती, भले हमें उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बोलने से कम हो जाता। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंते भोज्यते चैव। भुंते याने खाना चाहिए, भोज्यते याने खिलाना चाहिए। केवल खाना नहीं चाहिए, खिलाना भी चाहिए। तो भुंते भोज्यते, तो हमारी संस्था में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये छह चीजें बड़े आसानी से की जाती हैं। जैसे हम लोग ज्ञान बांटते हैं किताबों के द्वारा, उत्सव करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आइए, हम उनको प्रसाद देते हैं, प्रवचन के द्वारा ज्ञान देते हैं, तो ये सब हमारी संस्था में बड़ी आसानी से किया जाता है। भुंते भोज्यते चैव, हमारे हर उत्सव में प्रसाद वितरित किया जाता है। और फिर जो कांग्रीगेशन के भक्त होते हैं वो ब्रह्मचारियों को घर पर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, फिर ब्रह्मचारी सबको अपने घर पर बुलाते हैं, अर्थात मंदिर में बुलाते हैं। तो ये आदान प्रदान होता है और ये होना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। षडविधा प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण क्या हैं, ये हैं, हम कुछ दें उनसे कुछ लें, अपने मन की बात कहें, मन की उनकी बात सुने, हम कुछ भोजन उनको कराएं और हम भोजन करें या भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। तो ऐसे ये भक्ति का मार्ग है, भक्तों के संबंध ऐसे अच्छे होने चाहिए। प्रेम का संबंध, हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए, एक परिवार। एक परिवार मतलब उद्देश्य एक है, एक परिवार का उद्देश्य एक होता है, हम सबका उद्देश्य एक है, श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए आज यहाँ पर हम लोग इतने आराम से बैठे हैं, दो दिन से बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें तो अभी से चिंता है कि कल हम लोग वापस चले जाएंगे। हम सोच रहे कि और कुछ दिन ऐसे ही चलता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा लग रहा है ना। सब एक साथ हैं, प्रसाद लेते हैं साथ में, फिर कथा सुनते हैं, अभी शाम को कीर्तन भजन होगा, बस ऐसे ही कुछ दिन और। लेकिन अभी हमें आज दोपहर से हमें वही चिंता शुरू हो गई कि अरे कल सब चले जाएंगे, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा संबंध प्रेम का होना चाहिए, हम सबके बीच में इतना गाढ़ा प्रेम होना चाहिए कि अगर एक भक्त भी जा रहा है तो हमें दुख होना चाहिए। अगर कोई हमारे समुदाय से बाहर जाता है, भक्ति को छोड़ता है, तो हमें दुख होना चाहिए। और ये दुख कब होगा, जब एक दूसरे से प्रेम होगा। और प्रेम का दिखावा नहीं होना चाहिए, बाहरी दृष्टि से प्रेम नहीं कि किसी भक्त को देखे तो वाह प्रभु जी आप तो, जो जो हम बोलते रहते हैं, बाहरी दिखावा नहीं, हृदय से प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, उस भक्त की भक्ति में प्रगति की सहायता करके, यह सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम बाहरी दिखावा नहीं है, सच्चा प्रेम कोई भौतिक चीजें लाकर दे देना नहीं है, सच्चा प्रेम है उस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाने में मदद करना, ये सच्चा प्रेम है। तो ऐसा प्रेम हम सबके बीच में होना चाहिए, हमारा इतना मजबूत परिवार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर इसको हिला नहीं पाए। भारत में मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया, क्यों किया, क्योंकि ये शक्ति चली गई, आध्यात्मिक शक्ति, इसको लोगों ने त्याग दिया, और इसीलिए मुगल राज्य कर पाए, इसीलिए अंग्रेज राज्य कर पाए, और इसीलिए आज भी वासनाएं लोभ राज्य कर रहे हैं, क्योंकि हमने आध्यात्मिक जीवन को त्याग दिया। लेकिन अब हमें गुलामी को तोड़ना है, और अकेले गुलामी नहीं टूट सकती, संग चाहिए। इसलिए हम सबको एक परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, एक परिवार, एक वंश, एक कुल, कृष्ण कुल, एक ही कुल है हमारे, एक ही कुल देवता है कृष्ण, और ये सत्य है, हमारा एक ही गोत्र है। आप सबको अगर पूछे तो सबके अलग अलग गोत्र होंगे, है ना? क्या गोत्र है? उच्च गोत्र है? अच्छा, आपका गोत्र क्या है? आपका हा? तो ऐसे अलग अलग गोत्र हैं, किसी का कश्यप, किसी का भरद्वाज। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिनका गोत्र कश्यप है मतलब वो कश्यप मुनि के वंशज हैं, जिनका भरद्वाज है वो भरद्वाज मुनि से आ रहे हैं। तो आप जानिए, जब हम बड़े अहंकार से अपने गोत्र को कहते हैं तो ये भी जान लीजिए कि गोत्र मतलब आप ऋषि पुत्र हैं, भरद्वाज पुत्र हैं, कश्यप पुत्र हैं। क्या आपका आचरण वैसा है? गोत्र हम बड़ी आसानी से कहीं जाते हैं पूजा करने, गोत्र क्या? कश्यप गोत्र है। लेकिन कभी सोचा आपने, कश्यप गोत्र मतलब आप कश्यप ऋषि के वंशज हैं, ऋषि पुत्र हैं, आचरण है वैसा? और फिर अगर गोत्र के और भी आगे जाएं तो ये जो सारे गोत्र हैं ये ब्रह्मा जी से आते हैं, सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चाहे भरद्वाज हो, कश्यप मुनि हो, जो भी हो, सब ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। तो सबका गोत्र ब्रह्मा गोत्र हो गया। ब्रह्मा किससे आ रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से। तो सबका गोत्र गर्भोदक्षाय विष्णु हो गया, सबके कुल देवता गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए। और गर्भोदक्षाय विष्णु किससे आते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु से। तो हमारा सबका गोत्र और कुल देवता कारणोदक्षाय विष्णु, और वो कारणोदक्षाय विष्णु किससे आते हैं? अंततः कृष्ण से। तो इसीलिए हमारा गोत्र कृष्ण गोत्र, हमारा कुल कृष्ण कुल, हम सब ऋषि पुत्र हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सब मुझसे आ रहे हैं। तो हमें कम से कम ऋषि पुत्रों की तरह आचरण करना चाहिए। तो ऐसी भक्ति का मार्ग हमें लेना चाहिए। तो ये होगा जब हम आपस में एक परिवार की तरह रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार, एक कुटुंब मानेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, केवल प्रेम। कितना अच्छा वो वातावरण होगा जब हर भक्त एक दूसरे भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहा, हर भक्त को दूसरे भक्त से प्रेम है। और कभी कोई भक्त जाए तो हमें दुख हो, आजकल हमें दुख नहीं होता, कोई आके कहता है प्रभु जी मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कब जा रहे हो? कल जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना, हम लोग ऐसा कह देते हैं। वैसे बोलने में भी ये जो अच्छा शब्द है ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। फोन आता है, प्रभु जी फला फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, अच्छा क्या है उसमें? हम लोग ऐसे कह देते, अच्छा, अरे अच्छा नहीं है, बुरा है। लेकिन अगर कोई भक्त जाता है तो हमें दुख होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के समाज से। हाँ, अगर वो कहीं भी जा रहे भक्ति में है, कोई चिंता की बात नहीं, भक्ति में बना रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारे समाज से, हमारे परिवार से जा रहे हैं, दूसरे परिवार में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दुख होना चाहिए। जैसे जब विवाह होता है तो एक पुत्री जो है वो दूसरे घर में जाती है, विदाई होती है, तो घर वाले रोते, पता नहीं आजकल रोते हैं कि नहीं, पहले ये प्रथा थी, रोया जाता था, आजकल रोते हैं प्रभु जी? रोते हैं अभी भी? अच्छा, मतलब नियम बना हुआ है, शायद कुछ डालते होंगे आंखों में, क्ष, क्ष, क्ष। क्योंकि नियम है ना? या फिर ऐसा होता होगा जैसे नियम है कि अभी तक सब ठीक था, अचानक फिर कोई आके अनाउंस करता होगा, ओके सब रेडी? बोले हाँ रेडी। क्या हो रहा है? अभी वो जाने वाली है, ओके। तो ऐसा हो सकता है, क्षमा कीजिए, हमें पता नहीं अभी क्या होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पहले जब लड़कियां जाया करती थी तो माँ जो है खास करके या अन्य लोग रोते थे, क्योंकि भले वो दूसरे परिवार में जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमें भी विदाई देनी चाहिए अगर कोई दूसरे परिवार में भी भक्ति के ही परिवार में जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमें वो दुख नहीं होता हम लोग, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसलिए भक्तों में गाढ़ा प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम कि हमें प्रेम का आधार क्या होना चाहिए, प्रेम का आधार कृष्ण होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। ऐसे प्रेम से फिर जो वातावरण उत्पन्न होगा, फिर हम बड़ी अच्छी तरह भक्ति कर सकेंगे। तो इस चीज को हमें सीखना चाहिए। ये है ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। किसी का कोई प्रश्न है इस पर? अब तक जो हमने चर्चा की, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई शंका, कोई टीका टिप्पणी? यस, हाँ जी, किसने? मनुष्य ने कांच को क्यों पकड़ा और वज्र नहीं हीरे को, रत्न को? मनुष्य ने कांच को क्यों पकड़ा और हीरे को क्यों छोड़ा? श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि मान लो किसी ने एक व्यक्ति को कुएं में धक्का मार दिया, अब वो कुएं में गिर गया, ऊपर से कोई रस्सी डाल रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन वो कह रहा है नहीं पहले मुझे बताओ मुझे धक्का किसने मारा, मैं अभी बाहर नहीं आऊँगा। तो प्रभुपाद कहते कि किसी ने भी धक्का मारा हो, किसी भी कारण से मारा हो, पहले बाहर आना। तो व्यक्ति ने किसी भी कारण से कांच को पकड़ा हो, अब रत्न को पकड़ना है, ये हमारा काम है। और वैसे कांच इसलिए पकड़ते हैं इस जगत में व्यक्ति, क्योंकि अज्ञान है, अविद्या है, तो इसीलिए कांच की चकाचौंध को देखकर उसकी ओर प्रभावित हो जाते हैं, और असली रत्न को पहचानने का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कांच को पकड़े रहते हैं। जैसे आपको दोनों चीज़ें दी जाएं, कांच और हीरा, आप भी नहीं पहचानते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है आप हीरे को फेंक दें, कांच को पकड़ लें। तो इसी तरह हमें ज्ञान नहीं है कि ये जो बाहरी दिखने वाला आकर्षण, जो थोड़े सा आनंद देने वाली चीज़ है, ये हमें कितने बड़े कष्ट में डालने वाली है, और इसलिए हम कांच को पकड़े रहते हैं। ठीक है, यस प्रभु। पता नहीं ये लोग यही बात क्यों पढ़ते हैं सब लोग। सही है, सही है, सही
है। प्रश्न ये है कि मेरा ये विश्वास होता है कि मन का जो पाप है उसको निकालना चाहिए, वो कैसे निकाल सकते? शरीर के लेवल पर, वाणी के लेवल पर आसान है, लेकिन मन के लेवल पर पाप कैसे निकाल सकते?
मन को शुद्ध करके, जपा के द्वारा, क्योंकि जब ये आध्यात्मिक क्रिया है, और जब हम जप करते हैं, ये मंत्र है, मंत्र का अर्थ है मनः त्रायति इति मंत्र, जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं। तो जितने ज़्यादा हम मंत्र का जाप ध्यान पूर्वक करते हैं, उतना ज़्यादा मन से ये भावनाएँ दूर जाती हैं, और फिर वही भावनाएँ हमारे शरीर में, हमारी वाचा में भी आती हैं, तो लेकिन पहले मन को ही साफ करती हैं। तो इसीलिए जप एक विधि है मन को तारने की, हमें प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक जप को करते रहें, और निश्चित वो करने से मन साफ होगा। और उसके साथ साथ ज्ञान को लेना, जैसे भागवत के पहले स्कंद में कहा गया है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंति को विदस्तस्य को न कुरियात कथारतिम। तो उसमें कहते हैं कि हमारे जो हृदय में हैं गांठें बड़ी हुई हैं, कर्म ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठें, और बहुत जटिल हैं, बंधी हुई है, खोल नहीं सकते, कर्म ग्रंथि निबंधनम। तो छिंदंती कोविद, जो बुद्धिमान है कोविद है, वो छिंदंती काट देता है, कैसे? एक अनु यद अनुध्या सिना, सिना यानी तलवार, तो तलवार से काटता है, वो तलवार क्या है, भगवान का स्मरण। यद अनुध्या सिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। तो ऐसा कौन मूर्ख है जो कथा में रथी नहीं लेगा। तो कथा श्रवण करने से भगवान का स्मरण बढ़ता है और वो स्मरण एक तलवार की तरह है जो हमारे मन में गांठों को काट देती है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, यमुना नदी तो हर हर समय पर है, आज नहीं, शाश्वत। क्यों है? क्योंकि हर युग में, हर मन्वंतर में भगवान लीला करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण इसी मन्वंतर में आए। कृष्ण तो पिछले मन्वंतर में भी आए होंगे, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में आए होंगे, तो उस समय भी यमुना रहे होंगे। तो यमुना तो है यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, हाँ, ध्रुव राशि। हाँ जी, ये जितने भी आप नक्षत्र इत्यादि देखते हो, जिनको नक्षत्र कहते हैं, राशियां कहते हैं, दरअसल ये लोक हैं सारे। और उनके जो नाम हम कहते हैं कि ये धनु राशि है, ये मकर राशि है, ये नक्षत्र ये है, ये विशाखा नक्षत्र है इत्यादि, तो वो उसके जो अधिष्ठाता देव या देवी हैं उनके नाम पर है, अर्थात उस लोक के वो प्रमुख हैं। तो इसीलिए वो नक्षत्र भी हैं, जैसे ध्रुव तारा है तो ध्रुव प्रमुख हैं। तो ऐसे अन्य नक्षत्रों पर जो प्रमुख होते हैं, जैसे विशाखा नक्षत्र या अन्य नक्षत्र, तो उसके उस नाम पर वो होता है, तो वो नक्षत्र भी हैं। तो ये जो जितने भी हम नक्षत्र ग्रह देखते हैं, ये खाली तारे नहीं हैं चमकने वाले, इनमें लोग रहते हैं, और उस लोक का एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है, उसके नाम पर वो नक्षत्र पड़ता है, उसको नक्षत्र। हाँ जी, सृष्टि शाश्वत काल में होती है, और फिर जैसे जो अपना ब्रह्मांड बनता है, फिर उसका नाश होता है, फिर बनता है, तो वो सृष्टि होती रहती है। जैसे जो सप्त ऋषि हैं, वो हर मन्वंतर में बदलते रहते हैं, तो कुछ समय तक के लिए रहते हैं, फिर समय चेंज हो जाता है, वो बदल जाते हैं, कोई और ऋषि आ जाते हैं, वो सप्त ऋषि कहलाते हैं। तो ये बदलना स्वभाव है भौतिक जगत का, बदलते रहते। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, भौतिक हैं जो नक्षत्र हैं, ध्रुव लोक को छोड़कर, ध्रुव लोक को छोड़कर बाकी जितने भी नक्षत्र हैं, ये भौतिक जगत का हिस्सा हैं। जब भौतिक जगत का नाश होता है, इनका भी पूर्ण नाश हो जाता है। फिर से जब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, तब फिर से ये प्रकट होते हैं, तो वो भी भौतिक ही है, वो आध्यात्मिक नहीं है। ब्रह्मा जी का लोक भी भौतिक है, उसका भी नाश हो जाता है। हाँ, सुबह हमने बताया था कि भक्ति से चीजों को सही रूप में देखने की पहचान होती है। तो क्या भक्ति का अर्थ विवेक है या कुछ और? विवेक ये हमारी बुद्धि का एक लक्षण है, अर्थात क्या सही है क्या गलत है देखना। तो ये भौतिक दृष्टि से भी हो सकता है, एक विवेकी पुरुष उसको भी कहा जा सकता है, जो भले ही भक्त ना हो लेकिन भौतिक दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है जानता है, अर्थात शास्त्र की दृष्टि से। तो साधारण पाप और पुण्य का स्तर, तो वो भी विवेकी पुरुष कहला सकता है, वो विवेक है। लेकिन जब वही विवेकी पुरुष भगवान की भक्ति के द्वारा भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ में अंतर करता है, तो वो भक्ति होती है। तो चीज़ों को सही रूप में देखना मतलब क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, इसको देखना, ये भक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, स सॉरी हमने ठीक से नहीं सुना, क्षमा चाहते हैं। विज्ञान धर्म का अनुचर है, ये सही हो सकता है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान मिलकर धर्म बनता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। तो ज्ञान और विज्ञान ये दोनों होते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो ये वो धर्म का अनुचर हो सकता है, लेकिन धर्म विवेक का अनुचर है ये सही नहीं है, क्योंकि वो विवेक भौतिक हो सकता है। तो वो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष उस स्तर का धर्म है, वो धर्म नहीं है जो सवय पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षचे। तो वो धर्म जो नैतिकता के स्तर पर है वो विवेक का अनुचर हो सकता है, क्योंकि उसमें केवल नैतिकता, अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन भक्ति नैतिकता से परे है। आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर आपके पिता की कोई हत्या कर रहा है आपके आंखों के सामने, नैतिकता क्या कहती है? या तो आप उसको मारेंगे, उसको पुलिस में देंगे, उसको दंड देंगे, कुछ तो करेंगे, ये नैतिकता है। प्रहलाद महाराज की आंखों के सामने प्रहलाद महाराज के पिता को मारा जा रहा है, नरसिंह देव मार रहे हैं, और प्रहलाद क्या कर रहे हैं, हार लेकर खड़े हैं कि ठीक है आप मारना बंद कीजिए, फिर मैं आके जय नरसिंह देव, मेरे पिता को मारा, बहुत अच्छा कार्य किया। क्या नैतिकता है? तो धर्म, सच्चा धर्म नैतिकता से परे है, केवल नैतिकता के स्तर पर नहीं है। नैतिकता के स्तर पर जो धर्म किया जाता है वो शरीर से संबंधित है, इसीलिए नैतिक नियमों के पालन में रहता है। लेकिन जब नैतिकता से परे जाते हैं, जहाँ के धर्म, जहाँ के सिद्धांत भगवान की भक्ति पर आधारित हैं, आध्यात्मिक नियम हैं, वो सच्चा धर्म है। तो जो धर्म विवेक का अनुचर है वो केवल नैतिकता के स्तर पर है, समाज में एक अच्छे नैतिक नियमों को स्थापित करने के लिए है। वो पूर्ण नहीं है, वो धर्म है पूर्ण नहीं है। पूर्ण धर्म कृष्ण भक्ति है, इसको जानना चाहिए, और उसके लिए वो विवेक का अनुचर नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति केवल भक्तों की अनुचर होती है, भगवान के द्वारा दिए गए मार्ग को बताते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो धर्म है। ठीक है, हाँ जी। चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिए? हाँ, कब दिए? हाँ, चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण ने दर्शन कब दिए? शास्त्रों में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और ये एक जगह नहीं, करीब 25-30 जगह शास्त्रों में कहा गया, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वेदों में, पुराणों में, अन महाभारत में, अलग अलग स्थानों में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए उनको उनके दर्शन की आवश्यकता नहीं है, अपने ही दर्शन वो रोज कर रहे थे। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को रोज दर्शन दे रहे थे, लेकिन वैसे प्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने दर्शन दिए। दरअसल चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को षडभुज रूप दिखलाया अपना, 6 भुजाओं वाला रूप। तो उसमें 2 भुजाएं रामचंद्र जी की थीं, 2 भुजाएं कृष्ण की थीं, और 2 भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की थीं। तो एक भुजा, 2 भुजाओं में उन्होंने धनुष बाण लिया हुआ था, 2 भुजाओं से बांसुरी बजा रहे थे, बहुत सुंदर रूप था। खड़े हैं सामने, 2 हाथों से बांसुरी पकड़ी हुई है, अन्य 2 हाथों में, एक में धनुष एक में बाण है, और फिर दोनों हाथों में कमंडल लिया हुआ है सन्यासी की तरह। और इसीलिए वासु घोष जो बहुत महान भक्त हैं वो एक भजन लिखते हैं, और वो कहते हैं सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो वही कृष्ण हैं। और वो कौन हैं? जिन्होंने पूर्व में केह बोले पूर्व में रावण बधीला गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला, तो ये वही हैं कृष्ण। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद कृष्ण का रूप बहुत सारे लोगों को दिखलाया। ठीक है, कोई अवतार कोई आने वाला है बहुत जल्दी, अभी एक 4 लाख साल बाद, 4,20,000 साल बाद, अभी बस उसका नाम है कल्कि, लेकिन अभी नहीं, 4 लाख साल के बाद अर्थात कलयुग के अंत में। अभी कई संस्थाएं हैं बोलती कलयुग अभी समाप्त होने वाला है 2012, आपको मालूम है एक संस्था ने घोषणा कर दी 2012 में सारा संसार समाप्त, कलयुग समाप्त, संसार समाप्त, हंगामा हो गया, लोगों ने पिक्चरें बना दी 2012 ना, पिक्चर बनी थी 2012, और हम लोगों से लोग प्रश्न करने लगे। एक कॉलेज के विद्यार्थी, हम कॉलेज प्रोग्राम दे रहे थे, कॉलेज के विद्यार्थी ने पूछा सर 2012 में तो सब समाप्त होने वाला है, आपका क्या कहना है? हमने कहा जनवरी 2013 में ये प्रश्न पूछना हमसे, तब उत्तर देंगे इसका। कुछ नहीं होने वाला, और देखिए कुछ नहीं हुआ। तो जैसे 2013 आ गया कुछ नहीं हुआ, तो संस्था से लोगों ने पूछा अरे तुमने कहा था 2012 में, नहीं नहीं अभी 2022 में होगा, तो थोड़ा शिफ्ट कर दिया, अब 2022 भी निकल जाएगा तब पूछेंगे, 2032 में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, शास्त्र कहता 4 लाख साल तक कुछ नहीं होने वाला, और उसके बाद कल्कि आएंगे। तो अब अगला भगवान का अवतार प्रत्यक्ष रूप में केवल कल्कि है, लेकिन एक अवतार अभी भी हमारे बीच में है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, तो हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो हम भगवान का संग करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, छोटा गोपीनाथ मंदिर में, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? तो बहुत लोग गए, हम लोग सोच रहे थे अगली यात्रा जगन्नाथपुरी मायापुर की करेंगे, लेकिन आप लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ, कम लोग गए हैं, तो हम लोगों की अगली यात्रा भी हमें सोचना है ना, कहाँ जाना है। तो छोटा गोपीनाथ में भगवान बैठे हुए हैं, और बाकी सारी जगह पर हम देखते हैं कि कृष्ण खड़े रहते, तो ऐसा क्यों है, किसी को पता है? ठीक है, तो हम बताते हैं। टोटा गोपीनाथ जी की सेवा कौन करते थे? गदाधर पंडित। तो जब सेवा किया करते थे तो बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उनको बार बार खड़े होकर सेवा करना, उनकी भगवान की थोड़ी तकलीफ होता था, लेकिन वो छोड़ते नहीं थे वृद्ध होकर भी। देखो हमें जानना चाहिए, लोग इतने महान भक्त हैं लेकिन फिर भी बूढ़े हो गए, हाथों में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। तो जब भगवान ने देखा कि ये इतने, उन्होंने मना किया कि तुम मेरी सेवा मत किया करो, इतने बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा सेवा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा तो भी नहीं छोड़ेंगे, बोले सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो वो बैठ गए। तो पहले बैठे नहीं थे गोपीनाथ जी, फिर वो बैठ गए क्योंकि उनसे खड़े होकर सेवा नहीं हो रही थी, तो जब वो बैठ गए तो बैठकर वो सेवा कर सके। तो ये भक्त के प्रेम के कारण गोपीनाथ जी बैठे हैं, अन्यथा पहले वो खड़े हुए ही थे। ठीक है, और कोई प्रश्न? सनातन गोस्वामी मंजरी हैं, लवंग मंजरी नाम है उनका। तो मुस्लिम परिवार में जन्म क्यों लिया? ब्रह्मा जी मुस्लिम परिवार में ले सकते हैं, हरिदास ठाकुर। हाँ, तो क्यों, अच्छा क्यों आए ये प्रश्न है, या मुस्लिम परिवार में क्यों आए? हाँ, ओ ये जो 6 गोस्वामी हैं ये मंजरियां हैं, केवल 6 गोस्वामी नहीं, हमारे कई आचार्य भी मंजरियां हैं। और मंजरियां इस जगत में आती हैं भगवान के भक्ति का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मंजरियां कौन हैं? आध्यात्मिक जगत में मंजरियों की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है, बस इतना ही उम्र होती है, उससे बड़ी नहीं होती वो कभी, उनसे बड़ी सखियाँ होती हैं। तो जब श्री श्री राधा और कृष्ण लीला करते हैं तो सखियाँ होती हैं और सखियों की मदद मंजरियाँ करती हैं, और जब सखियाँ चली जाती हैं तो केवल मंजरियाँ भगवान की सेवा करती हैं। इसीलिए वो भक्ति के सर्वश्रेष्ठ रहस्य को जानती हैं, और इसीलिए वो मंजरियाँ आचार्यों के रूप में यहाँ पर आते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं। अलग अलग स्थानों में केवल इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वो दिखा सके कि भक्ति किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। और वैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आपके यहाँ के हैं, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण है, वो GSB कहते हैं ना यहाँ पे, हाँ, तो वो सब आपके कोंकण के हैं, वो कर्नाटक के हैं, वो पहले कर्नाटक में थे उनके वंशज, फिर यहाँ से वो लोग चले गए बंगाल, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका। उन्होंने मुसलमान की सेवा को स्वीकारा, उसका एक कारण था कि उस समय मुसलमान हिंदुओं को चेंज कर रहे थे, और बड़ा सरल तरीका था बदलने का, ऐसा था कि अगर कोई मुसलमान पानी पी के किसी हिंदू के ऊपर वो ऐसा फेंक देता है पानी को, वो हिंदू मुसलमान हो गया, बस इतना ही बात। तो वो लोग बदल रहे थे मुसलमानों में, तो उस समय ये जो दो भाई थे बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, सारे शास्त्रों को जानते थे, तो मुसलमान राजा ने उनसे कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। इन्होंने कहा नौकरी हम नहीं करते। तो मुसलमान राजा ने कहा कि देखो अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो जितने भी ब्राह्मण हैं ना इस तुम्हारे पूरे क्षेत्र में उन सबको हम मुसलमान बना देंगे। और उनके लिए मुसलमान बनाना बहुत सरल था, पानी पिया चलो नेक्स्ट मुसलमान। तो इन लोगों ने सोचा कि केवल हम दोनों के लिए क्यों इतने सारे लोगों पर अत्याचार हो, ठीक है हम लोग अत्याचार सहन कर लेते, इसीलिए दोनों नौकरी करने लगे एक मुसलमान की, अन्यथा वो नौकरी नहीं करते थे पहले, तो ये कारण था। और कोई प्रश्न किसी के? हाँ, ये उनके अंतर्धान होने की लीला है, क्योंकि जब भगवान को जाना होता है तो कोई ना कोई लीला करते हैं। जैसे कृष्ण को जाना था तो एक तीर चलवा दिया, तो जब चैतन्य महाप्रभु को जाना था तो उस समय उन्होंने कीर्तन किया टोटा गोपीनाथ में, बहुत देर तक कीर्तन किया, करते 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 अचानक वो अंदर चले गए आल्टर में और दरवाज़ा बंद कर लिया, तो दरवाज़ा बंद हो गया, आल्टर में चले गए, लोग कीर्तन करते रहे बाहर, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, आए ही नहीं। तो फिर सब हैरान हो गए क्या हुआ, तो फिर सब ने देखा खोला तो चैतन्य महाप्रभु नहीं थे वहाँ पर, छोटा सा है, आपने ऑल्टर देखा है ना, छोटा सा, वहाँ कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं और फिर सब ने देखा कि यहाँ पर ऐसे एक मार्ग था तो वहाँ से प्रवेश कर गए, ऐसे उनकी लीला है। हाँ, अगर यहाँ आ गए तो लवंग कौन दे रहा था? हमने एक बार वर्णन किया था भगवान की 16,100 शादियों का, याद है आपको? वैसे हमने 8 शादियों का वर्णन किया था और उसके बाद 16,100 शादियों का, और हमने कहा था कि 16,100 स्थान पे एक ही समय पर शादियाँ हो रही थी और सब जगह पर भगवान थे, साथ साथ देवकी वसुदेव वो भी थे, यानी वो भी 16,100 रूपों में हो गए थे। तो इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत में जो चलता है वो चलता रहता है, फिर वो विस्तार करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में ताला नहीं लगता है, अगर कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो वो अपना घर बंद करके नहीं आते हैं या बोल के नहीं आते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ आता हूँ, वो तो हो ही नहीं सकता। तो वो कृष्ण हैं, वो वहाँ भी रहते हैं वही यहाँ भी रहते हैं, तो इसी तरह भक्त भी। और कोई प्रश्न किसी के हैं? हाँ जी मैम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण में क्या अंतर है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये श्री कृष्ण को नमन है भगवान के रूप में, कि हे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ, ये ओम नमो भगवते वासुदेवा है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये श्रीमती राधा रानी को संबोधन है कि हे हरा, हे भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप मुझे कृपया कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो इसलिए ये मंत्र ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी के द्वारा जा रहे हैं, सीधे कृष्ण के पास नहीं जा रहे। तो ये दोनों में अंतर है। और कोई प्रश्न किसी के?
हाँ
चार भुजा चतुर्भुज चतुर्भुज रूप चतुर्भुज रूप दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि कृष्ण का चतुर्भुज रूप नहीं होता है। भागवत में वर्णन है कि कई स्थानों पर कृष्ण ने चतुर्भुज रूप वर्णन दिखाया। आपको याद है कोई कोई एक प्रसंग जहां कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखाया हो? हाँ, कंस को दिखाया। ओके, और हाँ देवकी वसुदेव को दिखाया, और हाँ नहीं अक्रूर को तो अंदर दिखाया था, सामने नहीं। किसको? पौंडरक को उन्होंने चतुर्भुज नहीं, पौंडरक ने चतुर्भुज रूप दिखाया था, दो एक्स्ट्रा हाथ लगा लिए थे। अर्जुन को, बहुत अच्छा, अर्जुन को दिखाया चतुर्भुज रूप। कब दिखाया था अर्जुन को? युद्ध के पहले जब गीता बोल रहे थे 11वें अध्याय में उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखा। और दुर्योधन को विश्वरूप दिखाया था, संजय को दिखाया, और कुंती को, भीष्म को दिखाया। यस, कौन कह रहे थे? भीष्म को दिखाया। यस, भीष्म के सामने चतुर्भुज रूप में आए। और कहीं एक जगह और उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया था, वैसे ये जो है यहाँ भी दिखा, एक जगह और हाँ गोपियों को दिखाया था। यस, और एक बार ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे और रुक्मिणी के से, ये भागवत में कथा आती है श्रीमद् भागवत में, तो रुक्मिणी के साथ बैठे थे तो अचानक उनकी इच्छा हुई थोड़ी मजाक करने की, तो उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि कहाँ तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं ठहरा ग्वाल बाल, और वैसे भी मुझे कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे से कोई बहुत प्रेम व्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारा हरण करके लाया। वो तो उन राजाओं को नीचा दिखाना था मुझे, वो लोग अपनी शक्ति बहुत सोच रहे थे, उनको हराने के लिए तुम्हें उठा के लाया, कोई प्रेम व्रेम नहीं था तुमसे। तो जब रुक्मिणी ने ये सुना तो वो तो बेचारे, अब सोचिए रुक्मिणी जो इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से कि देखे बिना उन्होंने लिख दिया था अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और उस रुक्मिणी को अभी कृष्ण कह रहे हैं कि तुमसे कोई प्रेम, वो तो राजाओं को हराना था इसलिए ले आया उठा के, और वैसे भी मैं तो ठीक भी नहीं ग्वाल बाल हूँ, तुम्हें किसी और से शादी करनी थी इत्यादि इत्यादि। तो रुक्मिणी एकदम बेहोश हो गई ये सुनते। देखिए कितना प्रेम होगा कि केवल सुनकर मजाक कर रहे हैं कृष्ण, लेकिन उन्हें वो पता नहीं, वो बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तो वहाँ भागवत में वर्णन है कि जब वो गिरी तो क्योंकि बहुत तेज गिर रही थी कृष्ण को चार हाथ लगाने पड़े। कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप चारों हाथों से पकड़कर उठा लिया उनको ऊपर। तो वहाँ भी रुक्मिणी को चार हाथों से उन्होंने, ये भागवत में वर्णन है। तो कृष्ण के भी चार हाथ हो सकते। आपका प्रश्न क्या था? चार हाथ, चार हाथ, ठीक है। और कोई प्रश्न? निश्चित होता है, क्यों नहीं होता है? ग्रहों का असर मनुष्यों पर ही होता है, देवताओं पर नहीं होता है। और ना ही प्राणियों पर होता है, मनुष्यों पर ही होता है। देखिए ऐसा है कि जो ग्रह हैं, अलग अलग जो ग्रहों की स्थिति है वो हम पर प्रभाव निश्चित करती है। इसीलिए कभी कभी लोग हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पहनते हैं, अलग अलग रंग के पत्थर होते हैं, कोई नीला, कोई पीला, कोई पता नहीं क्या क्या, तो वो भी सही है क्योंकि उससे प्रभाव कम होता है। दरअसल क्या है कि उसकी जो किरणें होती हैं उनको ये पत्थर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए विशेष पत्थर दिया जाता है। तो वो उस ग्रह की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो प्रभाव शरीर पर नहीं हो पाता, इतना ही है। तो ग्रहों का निश्चित रूप से प्रभाव होता है, लेकिन कब तक? जब तक हम भक्ति नहीं करते। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते, ग्रहों का प्रभाव होता है। जब आप भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, कुंडली, हाँ सच तो होता है। आप जानते हैं भारत में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है राव, पूरा नाम हमें याद नहीं आ रहा, बड़े फेमस हैं, किसी को पता है? बहुत फेमस हैं, यानी बड़े बड़े लोगों को सही सही सब बताते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कुंडली के बारे में, अलग अलग कुंडलियों के बारे में लिख रहे थे। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की कुंडलियों का वर्णन करते हुए भक्तों की कुंडली का वर्णन किया, और उन्होंने कहा कि भक्तों को अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को नहीं दिखानी चाहिए, ये वो खुद ज्योतिषी है, उनका कार्य कुंडली देखना है। वो भारत में प्रसिद्ध उसी लिए हैं, लेकिन उन्होंने खुद लिखा कि भक्तों को अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों की कुंडली देखने वाले हर व्यक्ति, देखने वाला हर योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भक्तों के ग्रहों की स्थिति अलग होती है साधारण व्यक्ति से। तो अगर कोई साधारण देखेगा तो वो गलत बता देगा, इसीलिए भक्तों को अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके ग्रहों की स्थिति जो दिखाती है कुंडली में, भक्ति करने से वो अलग होता है। तो उस ग्रह की स्थिति को पढ़ने वाला दक्ष व्यक्ति चाहिए, लेकिन वो आजकल है नहीं, इसीलिए अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। अपनी कुंडली दिखानी है तो मंदिर में आके जगन्नाथ जी के सामने रख देना चाहिए, और फिर उनके सामने खड़े होके पूछना चाहिए, बताइए इसका क्या उपाय है, क्या उपाय करूं, किसका सर फोड़ूं, किसके सर पर खड़े होके नृत्य करूं, क्या करूं। और फिर जगन्नाथ जी कहेंगे कुछ मत करो, हर रोज सुबह मंदिर आओ, मेरे दर्शन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। विश्व रूप और चतुर्भुज रूप में क्या अंतर है? भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। 11वें अध्याय में विश्व रूप का वर्णन है, और उसमें वर्णन किया गया है कि सब जगह अर्जुन को हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, असंख्य बाहो, और सब जगह उनके मुख दिख रहे हैं भगवान के, जब भगवान का विश्व रूप देखा, और बड़ा ही विकराल मुंह खुला हुआ है, ये काल रूप था, मुंह खुला हुआ है, और सारे भीष्म च द्रोणम च, ये सारे उनके मुख में जा रहे हैं और उनके दांतों में फंसे हुए हैं, भीष्म द्रोण इत्यादि, और अग्नि, ये बहुत विशाल रूप, जिसको देखकर घबरा गए अर्जुन, और अर्जुन ने कहा बस बस बंद करो नहीं दिखना, ये विश्व रूप है। और चतुर्भुज रूप बहुत सुंदर, ध्रुव महाराज ने देखा, प्रसन्न हो गए, जिसमें केवल चार भुजाएं, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, और विश्वरूप मतलब असंख्य बाहु, गिन नहीं सकते इतनी बाहु हैं। इसीलिए हम लोग विश्वरूप के मंदिर नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको ड्रेसिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग है ना, विश्वरूप की ड्रेसिंग कैसे करोगे, इतने सारे बाहें हैं, इतने सारे सर हैं, पता नहीं कितना कपड़ा लगेगा, इसीलिए मंदिर हम लोग या तो चतुर्भुज या द्विभुज, ज़्यादा नहीं। यस, और कोई प्रश्न? किसी के और कोई जिज्ञासा? संतुष्ट? सन्नाटा छा गया। बहुत अच्छा, किसी के और भी प्रश्न हो, अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रश्नोत्तर जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब जबरदस्ती मत पूछिए, अगर हो तो प्रश्न। यस, हाँ, किसी ने हमें बताया था, बहुत बड़ा लेकर जा रहे हैं, सोने का बना हुआ, हमने सुना नहीं है। हाँ, हमने उसको कुछ न्यूज़ सुना नहीं, हनुमान जी ने भी बताया नहीं हमें, सो उस पे ऊपर हम कमेंट कर नहीं सकते, हमें कुछ पता नहीं, डिटेल हमने कुछ पढ़ा नहीं कि क्या है, कहाँ मिला, और कैसे मिला वगैरह। लेकिन अगर हनुमान जी की गदा है तो फिर मंदिर में दे देना चाहिए उनको, है ना। तो हनुमान जी तो मंदिर में बैठते हैं तो मंदिर में देना चाहिए। समुद्र से मिला तो फिर मंदिर में देना चाहिए। आपको पता है कहाँ मिला, किसके पास है अभी? नहीं नहीं, किसके पास है? हम अभी जाके बोलते हैं भेजिए मंदिर में, हम लोग को कारोबार में बड़ा मंदिर बनाना है, तो कुछ तो लाभ होगा। हमें उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। और कोई प्रश्न? हमें भी चित्र दिखाए थे कुछ लोगों ने, कीर्तन के समय आंखों से आंसू निकले हैं, प्रभु जी नहीं दिखाए थे मुझे। क्या कह सकते हैं इस पे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, आंखों से आंसू निकालना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए। लेकिन नहीं भी हो सकता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही फैल जाती हैं। तो इसलिए हमें तो इन्होंने केवल दिखाया था इसलिए हमें मालूम है, और इनको भी किसी ने भेजा होगा। तो आजकल क्या हो गया, कम्युनिकेशन इतना है कि एक व्यक्ति कहीं भेज दे तो सारे जगत में ऐसे फैल जाता है कि जैसे अग्नि, और किसने भेजा कुछ पता नहीं चलता, फिर ढूंढते रहो पीछे पीछे पीछे। तो हमें उसकी सत्यता के विषय में ठीक से ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहें कि नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं, हो भी सकता है, क्या प्रॉब्लम है। भगवान आंखों से आंसू क्यों नहीं निकाल सकते, कीर्तन करते करते हो सकते हैं। लेकिन किसने शुरू किया, किसने लिया, किसने किया, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब तक हम वहाँ पर बात करके सही में बात को स्थापित नहीं करें मायापुर में, तब तक हम कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ, और ना ही ये कह सकते कि नहीं हुआ। तो इसलिए तटस्थता। और कोई प्रश्न किसी का?
ये कर्म के बारे में जो कूट बीज प्रारब्ध प्रारब्ध, ये पद्मपुराण में रहता है
श्लोक। हाँ, पद्म पुराण में दिया गया श्लोक कि पाप की चार अवस्थाएं होती हैं, कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो एक होता है प्रारब्ध, तो पद्म पुराण का श्लोक है अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। एक होता है प्रारब्ध, मतलब जो आपको अभी मिल गया, आप पाप कर रहा है। एक अवस्था होती है अप्रारब्ध, यानी उसके कारण पाप करेगा। एक बीज अवस्था में होता है, बीज यानी अगर उसको पानी मिल गया अच्छा तो वो पाप करेगा, पाप बन जाएगा, तो बीज है अभी, और अगर जल गया तो नहीं करेगा। तो एक प्रकट हो चुका है, एक अभी बस होने वाला है, अप्रारब्ध अभी होने वाला है। तीसरा प्रवृत्ति के रूप में रहता है, जिसको कूटम कहते हैं। कूटम यानी प्रवृत्ति, जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो कोई पेंसिल चुरा लेता है, ये कूटम है। उसको चुराना नहीं था, उसको ऐसे कोई इच्छा नहीं थी, बस उसने देखा चुरा लिया, तो ये कूटम है। कूटम मतलब ये उसकी प्रवृत्ति आगे चलकर निश्चित, अगर इसको अभी से नहीं संभाला गया, भक्ति में नहीं लगाया गया, चोर बनेगा, तो उसको कूटम कहते हैं। और बीज जो अभी हृदय में बीज के रूप में है, वो कभी आगे चलकर फिर कूटम बनता है, फिर फलम और पापम के रूप में आता है। तो ये चार अवस्थाएं। और कोई प्रश्न किसी का? बच्चों को बड़ा संभालना चाहिए, अगर कोई पेंसिल चुरा के लाए तो उसको थप्पड़ मार के वापस भेजना चाहिए, थप्पड़ तो नहीं, प्रेम से समझा के। और कोई प्रश्न किसी के? भूलोक के, जब हजारों की बात की जाती है तो भूलोक, भूलोक के हिसाब से, या देवताओं के, 36,000 देवताओं के वर्ष। तो देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के समान है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। और कोई प्रश्न? विग्रह, मूर्ति बड़ी नहीं होती है, विग्रह बड़े होते हैं। मूर्ति मतलब क्या है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं बनाई गई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार नहीं की गई, उसको मूर्ति कहते हैं। जैसे अभी हम लोग उस दिन कहीं एक स्थान पर गए थे कुछ कार्य के लिए, तो वहाँ गणेश जी की मूर्ति थी कंप्यूटर चलाते हुए, है ना, देखा था आपने, यल्लापुर में ऊपर रखा हुआ था। और एक थी, और क्या था उसके साइड में, एक था कुछ, एक कंप्यूटर चलाते हुए कुछ ऐसे ही। तो ये मूर्तियाँ हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं है, लेकिन विग्रह जो शास्त्र के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे अगर कोई धातु से बनाए जाएं, लकड़ी से बनाए जाएं, हीरे से बनाए जाएं, चित्र से बनाए जाएं, ये सारे प्रमाणिक हैं। तो ऐसे विग्रह की जब हम सेवा करते हैं तो वो निश्चित बड़े होते हैं। और इसका अगर आप प्रमाण देखना चाहें तो आप वृंदावन चले जाइए, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आप जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के बाहर यहाँ एक बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है, प्रभुपाद जी आरती कर रहे हैं कृष्ण बलराम की, तो आप उसका चित्र देख लीजिए और फिर अंदर जाके कृष्ण बलराम को देख लीजिए, आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि वही कृष्ण बलराम है। हमने जब एक भक्त को एक बार दिखाया, अभी कुछ दिन पहले हम वहाँ थे, तो हमने दिखाया, तो हमने उनको कुछ कहा नहीं, इनका ये चित्र देखिए, तो उन्होंने देखा हाँ हाँ ये कृष्ण बलराम है, फिर अंदर ले गए, हमने कहा अभी कृष्ण बलराम देखिए, बोले हाँ बहुत सुंदर हैं। फिर हमसे पूछने लगे आप लोगों ने विग्रह कब बदले, हमने कहा विग्रह नहीं बदले, वही विग्रह हैं, हो ही नहीं सकता वो। उन्होंने कहा आप लोगों ने बदल दिए, कोई बदले नहीं है, जिस प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था तब से चल रहा है। तो प्रमाण है, अच्छे से सेवा हो तो मोटे हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं उनके, ये भी है। आप भगवान की सेवा श्रृंगार शुरू कीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा। आप श्रृंगार करना शुरू कीजिए भगवान का, ड्रेस पहनाना मंदिर में आके, तो थोड़े दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा, आप बोलेंगे ये ड्रेस छोटी हो रही है, दूसरी लाओ। ओके, और कोई प्रश्न किसी के? यस प्रभु। जन्म हो सकता है, शास्त्र में लिखा है, गरुड़ पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं अहम पूर्ण भविष्यामि युग धर्म युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुतः। तो ये तो हजारों साल पहले घोषणा हो गई थी कि मैं आऊंगा, भविष्यामि, अहम पूर्ण भविष्यामि, पूर्ण मतलब अपने पूर्ण रूप में आऊंगा, अंश नहीं आएंगे, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः, विशेष युग संध्या में। कौन सी विशेष युग संध्या? जब कृष्ण प्रकट होते हैं उसको विशेष युग संध्या कहते हैं। तो युग संध्या मतलब एक युग समाप्त हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हाँ क्यों मर गए? अभी क्या है कि अगर वो एक ही व्यक्ति बने रहेंगे तो बाकी अवतार कहाँ से आएंगे? एक ही समझिए, मान लीजिए रामचंद्र जी अभी तक रहते और ज्यादा रह सकते थे। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था कि कृष्ण वापस जा रहे थे गोलोक, अभी गोलोक पहुंचे थे, पीछे घूमकर देखा उन्होंने, तो देखा अरे ये लोग सब धर्म भूल गए, अभी भगवद्गीता बोलकर आया, इनको कुछ याद नहीं है, तो जस्ट थोड़ा सा बोलने के लिए वापस आ गए कि कैसे भगवद गीता को जीना चाहिए, इसीलिए केवल 48 साल जीकर वापस चले गए। देखिए भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितना लंबा समय है उसमें रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण द्वापर में आए, अब द्वापर 8,64,000 साल का है, लेकिन श्री कृष्ण तो केवल 125 साल रहे। तो ऐसा नहीं है कि हर अवतार पूरा समय पे रहते हैं, वो थोड़ा सा लीला करते हैं, साधारण मानव की लीला करते हैं, चले जाते हैं। अब साधारण मानव तो बहुत लंबे समय नहीं रहते हैं, इसीलिए भगवान ने भी थोड़ा सा लीला की और चले गए। जितना जो कार्य के लिए आए थे, जब वो कार्य पूरा हो गया तो अब दूसरी जगह जाना है ना उन्हें। देखिए भगवान बहुत व्यस्त हैं, बड़े बिजी आदमी हैं वो, तो इतने समय रहते हैं जब तक काम पूरा नहीं होता। जिस दिन काम पूरा हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण सोचने लगे अरे अरे अब तो मेरा काम हो गया, अब वापस कैसे जाऊं, और मैं तो चला जाऊंगा लेकिन ये सारे यदुवंशी, इनका क्या होगा, इनको तो कोई मार ही नहीं सकता, वो किसी से मरते नहीं थे, यदुवंशी जो उनके पुत्र इत्यादि थे। कृष्ण के कितने पुत्र थे किसी को पता है? हम बड़े सरल से बता देते हैं, 16,108 रानियां थी, हर एक से 10-10 पुत्र थे, और उन 10-10 पुत्रों के फिर 10-10 पुत्र थे। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो कृष्ण सोचने लगे इनका क्या होगा, अभी महाभारत तो खत्म हो गया, तुरंत महाभारत युद्ध समाप्त होते ही सोच रहे थे, और उसी समय गांधारी आई, और गांधारी ने कहा कृष्ण कहाँ है, मैं श्राप देती हूं, जैसे तुम्हारे कारण मेरा अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, इतना अच्छा मेरा प्यारा प्यारा पुत्र है, ये लड़ना नहीं चाहता था, ये तुम्हारे कारण, तुमने उसका दिमाग खराब किया भगवद गीता कहकर, सही है ना, तो इसीलिए तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे तुम्हारे कारण मेरा सारा वंश समाप्त हो गया आपस में लड़कर, भाइयों में लड़कर, ऐसे ही तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने कहा जय हो जय हो, मैं सोच रहा था कहां से जाएंगे ये लोग, हाँ अभी पता चल गया आपस में लड़के मरेंगे। तो इसीलिए कृष्ण, जब भगवान का कार्य पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं, वो रुकते नहीं, फिर दूसरी जगह जाना होता है ना, यहाँ से खत्म करते दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ जन्म लेते, फिर और ब्रह्मांड में, वो घूमते रहते हैं, तो उनको बहुत सारे बिजी आदमी हैं एकदम, इसलिए थोड़े समय के लिए आते हैं। यस, और कोई प्रश्न? संतुष्ट, ठीक है, तो अभी हम लोग भजन सुनेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग भजन गाने वाले हैं, कितने लोग भजन गा रहे हैं, तो आज कुछ और कल कुछ गा सकेंगे, कृपया हाथ ऊपर कीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 लोग हैं, तो कितने भजन हैं टोटल पुदमपुर? 6 भजन, 11 लोग 6 भजन गा रहे हैं, ऐसे कैसे, कुछ गड़बड़ हो गया? आप लोग सब अलग अलग नहीं गा रहे हैं? फिर 11 भजन तो होने चाहिए कम से कम, 6 कैसे हो गए, कुछ गड़बड़ है, किसी के लिए नहीं आपने? अच्छा, आज जो 6 भजन के जेरोक्स हैं वो 6 भजन आज गाएंगे, या 3-4 उसमें से समय के अनुसार, बाकी कल सबकी, तो जिसकी जेरोक्स नहीं है आप थोड़ा लिख लो, कल लेकर आना ध्यान से। हाँ ओके, सो सबसे पहले कौन गाएंगे, फर्स्ट कौन है? लेडीज फर्स्ट होते हैं ना, ऐसे सुना है हमने, भौतिक जगत में ऐसा कहा जाता है, लेडीज फर्स्ट, महिलाओं को पहले, भौतिक जगत में नहीं, भागवत में भी सारी प्रार्थनाएं करने से पहले सबसे पहला स्थान कुंती महारानी को दिया गया, इसलिए माताजियों को पहला स्थान। तो आप लोग गाओगे? ओके, मृदंग कर तालुके से, आप मृदंग बजाओगे या मृदंग यहाँ बजे? ठीक, कौन सा गा रहे हो आप पहले? बोड़ो कृपा, ओके, आप यहाँ आ जाओ स्टेज पे, ऑफकोर्स। कोई बात नहीं, जो भी गा रहे हैं यहाँ बैठेंगे, माइक आपको पकड़ना पड़ेगा शायद, चलेगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है।